राजाओं की दूसरी पुस्तक अध्याय एक। एलिया द्वारा अहाज्या की मृत्यु की भविष्यवाणी। अहाब की मृत्यु के बाद मोआब देश ने इसराइल के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। अहाज्या शमरिया नगर में अपने राज घराने के ऊपरी कमरे की जालीदार खिड़की से नीचे गिर पड़ा और बीमार हो गया। तब उसने दूतों को बुलवाया और उन्हें यह आदेश दिया, जाओ और बाल जबूब एक्रोन के देवता से यह मालूम करो, क्या मैं अपनी इस रोगी अवस्था से ठीक हो सकूंगा। मगर यहावे का दूत तिशबेवासी एलिया से यह कह चुका था, उठो जाकर शमरिया के राजा के दूतों से भेंट कर उनसे कहना, क्या इसराइल राज्य में परमेश्वर नहीं है कि तुम एक्रोन के देवता बाल जबूब से पूछताछ करने जा रहे हो। इसलिए अब यहावे का संदेश यह है, अब तुम अपने बिछोने से जिस पर तुम इस समय लेटे हुए हो नीचे कभी ना आ सकोगे, तुम्हारी मृत्यु तय है। यह सुन एलिया चल पड़े। जब दूत राजा के पास लौटे, राजा ने उनसे प्रश्न किया, तुम लौट क्यों आए हो। उन्होंने उत्तर दिया, एक व्यक्ति हमसे भेंट करने आया था, उसी ने हमें आदेश दिया, राजा के पास लौट जाओ जिसने तुम्हें भेजा है, उससे कहना, यह यहावे का संदेश है, क्या इसराइल राज्य में परमेश्वर नहीं है कि तुम एक्रोन के देवता बाल जबूब से पूछताछ करने जा रहे हो। इसलिए अब तुम जिस बिछोने पर लेटे हुए हो उससे नीचे नहीं आओगे, तुम्हारी मृत्यु जरूर हो जाएगी। राजा ने उनसे पूछा, किस प्रकार का व्यक्ति था वह जो तुमसे भेंट करने आया था, जिसने तुमसे यह सब कहा है। उन्होंने उत्तर दिया, वह बालों का एक वस्त्र पहना हुआ था और वह चमड़े का कमरबंद बांधा हुआ था। राजा बोल उठा, वह तिशबेवासी एलिया है। राजा ने एक सेना के प्रधान को उसके 50 सैनिकों के साथ एलिया के पास भेज दिया। सेना के प्रधान ने वहां जाकर देखा कि एलिया पहाड़ी की चोटी पर बैठे हुए थे। सेना के प्रधान ने एलिया से कहा, परमेश्वर के जन राजा का आदेश है, नीचे उतर आओ। एलिया ने सेना के प्रधान को उत्तर दिया, यदि मैं वास्तव में परमेश्वर का जन हूं तो आकाश से आग बरसे और तुम्हें और तुम्हारे 50 को खत्म कर जाए। उनका यह कहना खत्म होते ही आकाश से आग बरसी और सेना के प्रधान और उसके 50 सैनिकों को चट कर गई। राजा ने 50 सैनिकों की दूसरी टुकड़ी को उनके प्रधान के साथ एलिया के पास भेजी। सेना के प्रधान ने एलिया से कहा, परमेश्वर के जन यह राजा का आदेश है, जल्द ही नीचे उतर आओ। एलिया ने उसे उत्तर दिया, यदि मैं सच में परमेश्वर का जन हूं तो आकाश से आग बरसे और तुम्हें और तुम्हारे 50 सैनिकों को चट कर जाए। उसी समय आकाश से आग बरसी और उसे और उसके 50 सैनिकों को चट कर गई। राजा ने 50 सैनिकों की तीसरी टुकड़ी को उनके प्रधान के साथ एलिया के पास भेजी। जब वह तीसरी 50 सैनिकों की टुकड़ी का प्रधान एलिया के पास पहुंचा, उसने उनके आगे घुटने टेक दिए और उनसे विनती की, परमेश्वर के जन, आपकी दृष्टि में मेरा और इन 50 सैनिकों का जीवन कीमती बना रहे। आकाश से आग बरसी और मुझसे पहले आए 2 सेना प्रधानों और उनके 50-50 सैनिकों को चट कर गई, मगर अब आपकी दृष्टि में मेरा जीवन कीमती हो। एलिया को यहावे के दूत ने आदेश दिया, निडर होकर उसके साथ चले जाओ। तब एलिया उठे और उसके साथ राजा के सामने जा पहुंचे। उन्होंने राजा को कहा, यहावे का संदेश यह है, आपने एक्रोन के देवता बाल जबूब से पूछताछ करने दूत भेजे थे, क्या इसलिए कि अब इसराइल देश में कोई परमेश्वर ना रहा जिनसे उनकी इच्छा मालूम की जा सके, इसलिए आप जिस बिछोने पर लेटे हैं उससे नीचे नहीं उतरेंगे, आपकी मृत्यु जरूर ही हो जाएगी। तब यहावे की भविष्यवाणी के अनुसार जो उन्होंने एलिया के द्वारा की थी, अहज्या की मृत्यु हुई। इसलिए कि अहज्या के कोई पुत्र ना था, उसकी जगह पर उसका भाई योराम राजा बन गया। यह यहूदिया के राजा यहोशाफात के पुत्र यहोराम के शासनकाल का 2 साल था। अहज्या द्वारा किए गए बाकी कामों का ब्यौरा इसराइल के राजाओं की इतिहास पुस्तक में दिया गया है। राजाओं की दूसरी पुस्तक अध्याय 2। एलिया का स्वर्ग में उठाया जाना। इसके पहले कि यहावे आंधी में एलिया को स्वर्ग में उठाते, एलिया एलीशा के साथ गिलगाल से यात्रा पर निकल पड़े। एलिया ने एलीशा से कहा, अब तुम यहीं ठहरो, क्योंकि यहावे ने मुझे बेथेल जाने का आदेश दिया है। मगर एलीशा ने उन्हें उत्तर दिया, जीवित यहावे की शपथ और आपके जीवन की शपथ, मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। तब वे दोनों ही बेथेल चले गए। तब बेथेल में भविष्यद्वक्ता मंडल के भविष्यद्वक्ता एलीशा के पास आकर उनसे पूछने लगे, क्या आपको इस बात का पता है कि आज यहावे आपके स्वामी को उठा लेने पर है? हाँ, मुझे मालूम है, आप चुप ही रहिए, एलीशा ने उत्तर दिया। एलिया ने एलीशा से कहा, एलीशा यहीं ठहरो, क्योंकि यहावे मुझे यरीखो को भेज रहे हैं। मगर एलीशा ने उनसे कहा, जीवित यहावे की शपथ और आपकी शपथ, मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। तब वे दोनों ही यरीखो पहुंच गए। तब यरीखो में भविष्यद्वक्ता मंडल के भविष्यद्वक्ता एलीशा के पास आकर उनसे पूछने लगे, क्या आपको इस बात का पता है कि आज यहावे आपके स्वामी को आपसे उठा लेने पर है? हाँ, मुझे पता है, आप चुप ही रहिए, एलीशा ने उत्तर दिया। तब एलिया ने एलीशा से कहा, यहीं ठहरे रहो, यहावे मुझे यर्दन को भेज रहे हैं। एलीशा ने एलिया को उत्तर दिया, जीवित यहावे की शपथ और आपकी शपथ, मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। तब दोनों ही आगे बढ़ते चले गए। भविष्यद्वक्ता मंडल के 50 भविष्यद्वक्ता वहां उनके सामने कुछ ही दूरी पर खड़े हो गए। एलिया और एलीशा यर्दन तट पर खड़े थे। एलिया ने अपनी चादर ली, उसे ऐंठ कर उससे यर्दन के पानी पर वार किया। नदी का जल दाएं और बाएं दो भागों में बांटकर स्थिर हो गया और वे दोनों सूखी जमीन पर चलते हुए पार निकल गए। नदी के पार एलिया ने एलीशा से कहा, इसके पहले कि मैं तुमसे दूर कर दिया जाऊं, मुझे बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? एलीशा ने उन्हें उत्तर दिया, यह कि मुझे आपके आत्मा का 2 गुना भाग मिल जाए। एलिया ने कहा, तुमने बहुत कठिन बात मांग ली है, फिर भी उस समय पर जब मैं तुमसे दूर किया जा रहा होऊंगा, अगर तुम मुझे देख लोगे तब तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी, मगर यदि मैं ओझल हो जाऊं तब तुम्हारी इच्छा पूरी ना होगी। जब वे इस तरह बातचीत करते हुए आगे बढ़ ही रहे थे, उन्हें आग के रथ और आग के घोड़े दिखाई दिए, जिन्होंने उन दोनों को अलग कर दिया। एलिया बवंडर में होते हुए स्वर्ग में उठा लिए गए। एलीशा यह सब देख रहे थे। वह चिल्ला उठे, मेरे पिता और इज़राइल के रथ और सारथी। इसके बाद एलीशा ने उन्हें फिर कभी ना देखा। तब एलीशा ने अपने वस्त्र पकड़े और उन्हें फाड़कर 2 भागों में बांट दिया। इसके बाद उन्होंने एलिया की देह से नीचे गिरी चादर को उठा लिया और लौटकर यर्दन के तट पर जा पहुंचे। उन्होंने एलिया की उस चादर से, जो एलिया की देह पर से गिर गई थी, जल पर प्रहार किया और यह कहा, एलिया के परमेश्वर यहावे कहाँ है? जब उन्होंने जल पर वार किया तो यर्दन का जल दाएं और बाएं बट गया और एलीशा पार निकल गए। जब यरीखो में भविष्यद्वक्ता मंडल के भविष्यवक्ताओं ने एलीशा को आते देखा, वे कह उठे, एलिया की स्वर्गीय शक्ति एलीशा को मिल चुकी है। वे सब एलीशा से भेंट करने आ गए और उनका अभिनंदन किया। उन्होंने उन्हें सुझाया, देखिए, अब आपकी सेवा में 50 बलवान पुरुष हैं। आप इन्हें अनुमति दे दीजिए कि वे आपके स्वामी को खोजें। यह संभव है कि यहावे के आत्मा ने उन्हें ले जाकर किसी पहाड़ या किसी घाटी में छोड़ दिया हो। एलीशा ने उत्तर दिया, कोई जरूरत नहीं उन्हें भेजने की। मगर वे हट करते रहे, यहां तक कि संकोच में आकर एलीशा कह बैठे, ठीक है, जाओ। उन्होंने 50 बलवान युवाओं को भेज दिया। वे 3 दिन तक खोजते रहे मगर असफल ही रहे। वे लौट आए, उस समय एलीशा यरीखो में ही थे। उन्हें देख एलीशा ने उनसे कहा, मैंने पहले ही ना कहा था, मत जाओ, पानी को शुद्ध करना। नगर वासियों ने एलीशा से विनती की, हमारे स्वामी देखिए, इस नगर की स्थिति सुखद है, यह आप भी देख रहे हैं, मगर यहाँ पानी सही नहीं है, साथ ही जमीन भी उपजाऊ नहीं है। एलीशा ने आदेश दिया, एक नए बर्तन में नमक डालकर मेरे पास ले आओ। एलीशा झरने के निकट गए, नमक उसमें डाल दिया और यह घोषित किया, यह यहावे द्वारा भेजा हुआ संदेश है, मैंने इस जल को ठीक कर दिया है। इसके बाद इस जल से ना तो किसी की मृत्यु होगी और ना किसी का गर्भपात, इसलिए आज तक उस झरने से शुद्ध जल ही निकल रहा है, जैसा एलीशा द्वारा कहा गया था। एलीशा का मजाक उड़ा जाना। इसके बाद एलीशा वहां से बेथेल चले गए। जब वह मार्ग में ही थे, नगर से कुछ बच्चे वहां आ गए और एलीशा का मजाक उड़ाते हुए कहने लगे, ओ गंजे, निकल जा यहां से, निकल जा गंजे। एलीशा पीछे मुड़े और जब उनकी नजर उन बालकों पर पड़ी, उन्होंने उन्हें यहावे के नाम में शाप दिया। उसी समय बंजर भूमि में से दो रीछनियां बाहर निकलकर आई और उन 42 बच्चों को फाड़ दिया। वहां से वह कार्मेल पर्वत को गए और फिर शमरिया को लौट गए। राजाओं की दूसरी पुस्तक अध्याय 3। इज़राइल के विरुद्ध मोआब का विद्रोह। यहूदिया के राजा यहोशाफात के शासनकाल के 18वें साल में अहाब का पुत्र यहोराम शमरिया में राजा हो गया और उसने 12 साल तक शासन किया। यहावे की दृष्टि में उसका व्यवहार गलत था, हालांकि उतना नहीं जैसा उसके पिता और माता का था, क्योंकि उसने अपने पिता द्वारा बनवाए हुए बाल के खंभों को हटा दिया। फिर भी वह नेबात के पुत्र यरोबोआम के उन पापों में लगा रहा जिन्हें करने के लिए वह इज़राइल को उकसाता रहा, वह इनसे दूर ना हुआ। मेशा मोआब का राजा भेड़ पालता था, उसे इज़राइल के राजा को हर साल 100,000 मेमने और 100,000 भेड़ों का ऊन देना होता था। अहाब की मृत्यु होते ही मोआब के राजा ने इज़राइल के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। तब राजा यहोराम शमरिया से बाहर निकल पड़ा और उसने सारी इज़राइली सेना को इकट्ठी की। तब उसने जाकर यहूदिया के राजा यहोशाफात को यह संदेश भेजा, मोआब का राजा मेरे विरुद्ध विद्रोह पर उतर आया है, क्या मोआब से युद्ध में आप मेरा साथ देंगे? यहोशाफात ने उत्तर दिया, जरूर मैं आपके साथ हूँ, जो मेरे सैनिक हैं वे आपके भी सैनिक हैं, मेरे घोड़े आपके घोड़े हैं। तब यहोशाफात ने पूछा, हमें किस दिशा से हमला करना है? यहोराम ने उत्तर दिया, एदोम के बंजर भूमि के मार्ग से। तब इज़राइल के राजा के साथ यहूदिया और एदोम के राजा भी शामिल हो गए। वे 7 दिन तक घूम घूम कर चलते रहे, इसमें ना तो सैनिकों के पीने के लिए पानी मिला और ना साथ चल रहे पशुओं के लिए। यह देख इज़राइल का राजा मन में कहने लगा, हाय, ऐसा लग रहा है यहावे ने 3 राजा मोआब को सौंप देने के लिए इकट्ठा किए हैं। यहोशाफात ने उससे पूछा, क्या यहाँ यहावे का कोई भविष्यद्वक्ता नहीं है कि हम उसके द्वारा यहावे की इच्छा मालूम कर सके? इज़राइल के राजा के एक सेवक ने उत्तर दिया, पुत्र एलीशा यहीं रहते हैं, जो एलिया के हाथों को धुलाया करते थे। यहोशाफात कह उठे, उनके पास यहावे का संदेश पहुंचता है। तब इज़राइल का राजा, यहूदिया का राजा और एदोम का राजा तीनों ही एलीशा से मिलने के लिए चले गए। एलीशा ने इज़राइल के राजा से कहा, मेरा और आपका कोई संबंध नहीं है, जाइए अपने पिता और अपनी माता के भविष्यवक्ताओं के पास। इज़राइल के राजा ने उन्हें उत्तर दिया, नहीं, खुद यहावे ने 3 राजाओं को मोआब के अधीन कर देने के लिए ही इकट्ठा किया है। एलीशा ने उत्तर दिया, जीवित यहावे की शपथ, मैं जिनके सामने खड़ा रहता हूँ, अगर मेरे मन में यहूदिया के राजा यहोशाफात के लिए आदर ना होता तो मैं ना तो तुम्हें देखना चाहता और ना ही तुम्हारी ओर दृष्टि करता, मगर अब मेरे लिए एक बजाने वाले का इंतजाम किया जाए। जब बजाने वाला बजाने लगा, एलीशा को यहावे की ओर से शक्ति मिली। एलीशा ने कहना शुरू किया, यहावे का संदेश यह है, इस घाटी को खाइयों में बदल दो, क्योंकि यह यहावे की घोषणा है, तुम्हें ना तो हवा दिखाई देगी और ना ही बारिश, फिर भी घाटी पानी से भर जाएगी कि तुम्हें पीने के लिए पानी मिल जाए। तुम्हें, तुम्हारे घोड़ों को और तुम्हारे सभी पशुओं को भी। यहावे की नजरों में यह बहुत ही आसान सा काम है। यहावे मोआबियों को आपके अधीन कर देंगे। इसके अलावा तुम हर एक गढ़ नगर और प्रमुख नगर पर हमला करोगे, हर एक अच्छे पेड़ को गिरा दोगे, सारे पानी के स्रोतों को बंद कर दोगे और हर एक उपजाऊ खेत को पत्थरों से पाट दोगे। अगली सुबह को जब बलि चढ़ाने का समय हुआ, यह देखा गया कि एदोम प्रदेश की दिशा से पानी बहने लगा और सारा इलाका पानी से भर गया। जब मोआब देश की प्रजा ने यह सुना कि राजा उनसे युद्ध करने आए हैं, तो बालक से लेकर बूढ़े तक को जो हथियार उठा सकते थे बुलवाया गया और उन सबको नगर सीमा पर खड़ा कर दिया गया। सुबह को सूरज उगने के समय जागने पर जब मोआब वासियों की दृष्टि सूरज से चमकते जल पर पड़ी, तो वह जल उन्हें लहू सा दिखाई दिया। वे आपस में कहने लगे, यह खून है, लगता है राजा आपस में ही लड़ पड़े और एक दूसरे को मार चुके हैं। तब तो हे मोआबियों, चलो लूट का सामान उठाने। मगर जब वे इसराइलियों की छावनी तक पहुंचे, इसराइली सेना ने उठकर मोआबी सेना को मारना शुरू कर दिया। तब मोआबी पीठ दिखाकर भागने लगे। इसराइली सेना मोआबियों को मारते हुए मोआबियों के देश तक प्रवेश करती गई और मोआबियों को मारते चली गई। इस प्रकार उन्होंने नगर खत्म कर दिए और हर एक व्यक्ति ने बढ़ते हुए अच्छी अच्छी उपजाऊ भूमि पर पत्थर डालकर खेतों को पाट दिया। इसी तरह उन्होंने सारे जल के स्रोत बंद कर दिए और सभी उत्तम हरे भरे पेड़ों को गिरा दिया। अब कीर हेरासेत की जमीन पर पत्थर ही पत्थर दिखाई दे रहे थे। वे जो गोफन का इस्तेमाल कर रहे थे, उन्होंने कीर हेरासेत को घेरकर उस पर हमला कर दिया। जब मोआब के राजा ने यह पाया कि उसकी सेना हार रही है, उसने 700 तलवारधारी सैनिकों को साथ लेकर एदोम के राजा की ओर बड़ी शक्ति के साथ हमला किया, मगर वे अपने लक्ष्य में असफल ही रहे। तब मोआब के राजा ने अपने उत्तराधिकारी जेठे पुत्र को नगर की शहरपनाह पर बलि के रूप में चढ़ा दिया। इससे उनमें इसराइली सेना के विरुद्ध बड़ा क्रोध छा गया और वे अपने देश लौट गए। राजाओं की दूसरी पुस्तक अध्याय 4। विधवा स्त्री और तेल पात्र। भविष्य वक्ता मंडल के भविष्य वक्ताओं में से एक की पत्नी ने एलिशा की दोहाई दी, आपके सेवक मेरे पति की मृत्यु हो चुकी है, आपको मालूम ही है कि आपके सेवक के मन में यहावे के लिए कितना भय था। अब हालात यह है कि जिसका वह कर्जदार था, वह मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए आ खड़ा हुआ है। एलिशा ने उससे पूछा, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? बताओ क्या क्या बाकी रह गया है तुम्हारे घर में? उस स्त्री ने उत्तर दिया, आपकी सेविका के घर में अब तेल का एक पात्र के अलावा कुछ भी बचा नहीं रह गया है। एलिशा ने उससे कहा, जाओ और अपने सभी पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग लाओ और ध्यान रहे कि ये बर्तन गिनती में कम ना हो। तब उन्हें ले तुम अपने पुत्रों के साथ कमरे में चली जाना और दरवाजा बंद कर लेना। तब इन सभी बर्तनों में तेल उंडेलना शुरू करना, जो जो बर्तन भर जाए उन्हें अलग रखते जाना। तब वह वहां से चली गई। अपने पुत्रों के साथ कमरे में जाकर उसने दरवाजा बंद कर लिया। वह बर्तनों में तेल उंडेलती गई और पुत्र उसके सामने खाली बर्तन लाते गए। जब सारे बर्तन भर चुके, उसने अपने पुत्र से कहा, और बर्तन ले आओ। पुत्र ने इसके उत्तर में कहा, अब कोई बर्तन नहीं है। तब तेल की धार थम गई। उसने परमेश्वर के जन को इस बात की खबर दे दी और परमेश्वर के जन ने उस स्त्री को आदेश दिया, जाओ यह तेल बेचकर अपना कर्ज भर दो। जो बाकी रह जाए उससे तुम और तुम्हारे पुत्र गुजारा करें। एलिशा द्वारा शूनामी स्त्री के पुत्र का पुनर्जीवन। एक दिन एलिशा शूनेम नाम के स्थान पर गए। वहां एक धनी स्त्री रहती थी। उसने एलिशा को विनती करके भोजन पर बुलाया इसके बाद जब कभी एलिशा वहां से जाते थे, वहीं रुककर भोजन कर लेते थे। उस स्त्री ने अपने पति से कहा, सुनिए, अब तो मैं यह समझ गई हूं कि यह व्यक्ति जो हमेशा इसी मार्ग से जाया करते हैं, परमेश्वर के पवित्र जन है। हम छत पर दीवारें उठाकर एक छोटा कमरा बना ले, उनके लिए वहां एक बिछोना, एक मेज, एक कुर्सी और एक दीपक रख दे कि जब कभी वह यहां आए वहां ठहर सके। एक दिन एलिशा वहां आए और उन्होंने उस कमरे में जाकर आराम किया। उन्होंने अपने सेवक गेहजी से कहा, शूनामी स्त्री को बुला लाओ। वह आकर उनके सामने खड़ी हो गई। एलिशा ने गेहजी को आदेश दिया, उससे कहो, देखिए, आपने हम दोनों का ध्यान रखने के लिए यह सब कष्ट किया है। आपके लिए क्या किया जा सकता है? क्या आप चाहती है कि किसी विषय में राजा के सामने आपकी कोई बात रखी जाए या सेनापति से कोई विनती की जाए? उस स्त्री ने उत्तर दिया, मैं तो अपनों ही के बीच में रह रही हूं। तब उन्होंने पूछा, तब इस स्त्री के लिए क्या किया जा सकता है? गेहजी ने उत्तर दिया, उसके कोई पुत्र नहीं है और उसके पति ढलती उम्र के व्यक्ति हैं। एलिशा ने कहा, उसे यहां बुलाओ। जब वह स्त्री आकर द्वार पर खड़ी हो गई, एलिशा ने उससे कहा, अगले साल इसी मौसम में लगभग इसी समय तुम्हारी गोद में एक पुत्र होगा। वह स्त्री कहने लगी, नहीं मेरे स्वामी, परमेश्वर के जन अपनी सेविका को झूठी आशा ना दीजिए। उस स्त्री ने गर्भ धारण किया और अगले साल उसी समय वसंत के मौसम में उसने एक पुत्र को जन्म दिया, ठीक जैसा एलिशा ने उससे कहा था। बड़ा होता हुआ वह बालक एक दिन कटनी कर रहे मजदूरों के बीच अपने पिता के पास चला गया। अचानक उसने अपने पिता से कहा, अरे मेरा सिर, मेरा सिर। पिता ने अपने सेवक को आदेश दिया, इसे इसकी माता के पास ले जाओ। सेवक ने उस बालक को उठाया और उसकी माता के पास ले गया। वह बालक दोपहर तक अपनी माता की गोद में ही बैठा रहा और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। उस स्त्री ने बालक को ऊपर ले जाकर उस परमेश्वर के जन के बिछोने पर लिटा दिया और दरवाजा बंद करके चली गई। तब उसने अपने पति को यह संदेश भेजा, मेरे पास अपना एक सेवक और गधा भेज दीजिए कि मैं जल्दी ही परमेश्वर के जन से भेंट कर लौट जाऊं। पति ने प्रश्न किया, तुम आज ही क्यों जाना चाह रही हो? आज ना तो नया चांद है और ना ही शब्बात। उसका उत्तर था, सब कुछ कुशल ही होगा। तब उसने गधे को तैयार किया और अपने सेवक को आदेश दिया, गधे को तेज हाँको, मेरे लिए रफ्तार धीमी ना होने पाए जब तक मैं इसके लिए आदेश ना दूं। वह चल पड़ी और कार्मेल पर्वत पर परमेश्वर के जन के घर तक पहुंच गई। जब परमेश्वर के जन ने उसे अपनी ओर आते देखा, उन्होंने अपने सेवक गेहजी से कहा, वह देखो शूनामी स्त्री, तुरंत उससे मिलने के लिए दौड़ो और उससे पूछो, क्या आप सकुशल है? क्या आपके पति सकुशल है? क्या आपका पुत्र सकुशल है? उसने उसे उत्तर दिया, सभी कुछ सकुशल है। तब जैसे ही वह पर्वत पर परमेश्वर के जन के पास पहुंची, उसने एलिशा के पैर पकड़ लिए। जब गेहजी उसे हटाने वहां पहुंचा, परमेश्वर के जन ने उससे कहा, ऐसा कुछ ना करो, क्योंकि इसका मन भारी दर्द से भरा हुआ है। इसके बारे में मुझे यहावे ने कोई सूचना नहीं दी है, इसे गुप्त ही रखा है। तब उस स्त्री ने कहना शुरू किया, क्या अपने स्वामी से पुत्र की विनती मैंने की थी? क्या मैंने ना कहा था, मुझे झूठी आशा ना दीजिए? एलिशा ने गेहजी को आदेश दिया, कमर कस लो और अपने साथ मेरी लाठी ले लो और चल पड़ो। मार्ग में अगर कोई मिले तो उससे हालचाल जानने के लिए ना रुकना। यदि तुम्हें कोई नमस्कार करे तो उसका उत्तर ना देना। जाकर मेरी लाठी उस बालक के मुंह पर रख देना। तब बालक की माता ने एलिशा से कहा, जीवित यहावे की शपथ और आपकी शपथ, मैं आपके बिना ना लौटूंगी। तब एलिशा उठे और उस स्त्री के साथ चल दिए। गेहजी ने आगे आगे जाकर बालक के मुंह पर लाठी टिका दी, मगर वहां ना तो कोई आवाज सुनाई दिया गया और ना ही उसमें जीवन का कोई लक्षण दिखाई दिया। तब गेहेजी ने लौटकर एलिशा को खबर दी, बालक तो जागा ही नहीं। जब एलिशा ने घर में प्रवेश किया, वह मरा हुआ बालक उनके ही बिछोने पर ही लिटाया हुआ था। तब एलिशा कमरे के भीतर चले गए और दरवाजा बंद कर लिया। वे दोनों बाहर ही थे। एलिशा ने यहावे से प्रार्थना की। तब वह जाकर बालक के ऊपर लेट गए। उन्होंने अपना मुख बालक के मुख पर रखा। उनकी आंखें बालक की आंखों पर थीं और उनके हाथ बालक के हाथों पर। जब वह उस बालक पर लेट गए, तब बालक के शरीर में गर्मी आने लगी। फिर वह नीचे उतरे और घर के भीतर ही टहलते रहे। तब वह दोबारा बिछोने पर चढ़ गए और बालक पर लेट गए। इससे उस बालक को 7 बार छींक आई और उसने आंखें खोल दी। एलिशा ने गेहजी को पुकारा और आदेश दिया, शूनामी स्त्री को बुलाओ। तब गेहजी ने उसे पुकारा। जब वह भीतर आई, उन्होंने उस स्त्री से कहा, उठा लो अपने पुत्र को। वह आई और भूमि की ओर झुककर एलिशा के पैरों पर गिर पड़ी। इसके बाद उसने अपने पुत्र को गोद में उठाया और वहां से चली गई। एलिशा द्वारा घातक भोजन की शुद्धि। एलिशा दोबारा गिलगाल नगर को लौट गए। इस समय देश में अकाल फैला था। भविष्यद्वक्ता मंडल इस समय उनके सामने बैठा हुआ था। एलिशा ने अपने सेवक को आदेश दिया, एक बड़े बर्तन में भविष्यद्वक्ता मंडल के लिए भोजन तैयार करो। एक भविष्यद्वक्ता ने बाहर जाकर खेतों में से कुछ साग पात इकट्ठा किया। वहीं उसे एक जंगली लता भी दिखाई दी, जिससे उसने बड़ी संख्या में जंगली फल इकट्ठा कर लिए। उसने इन्हें काटकर पकाने के बर्तन में डाल दिया। उसे यह मालूम ना था कि ये फल क्या थे। जब परोसने के लिए भोजन निकाला गया और जैसे ही उन्होंने भोजन खाना शुरू किया, वे चिल्ला उठे, परमेश्वर के जन, इस हांडी में मौत है। वे भोजन ना कर सके। एलिशा ने आदेश दिया, थोड़ा आटा ले आओ। उन्होंने उस आटे को उस बर्तन में डाला और कहा, अब इसे इन्हें परोस दो कि वे इसे खा सके। बर्तन का भोजन खाने योग्य हो चुका था। 100 अतिथियों के लिए 20 रोटियां। बाल शालिशा नामक स्थान से एक व्यक्ति ने आकर परमेश्वर के जन को उपज के प्रथम फल से बनाई गई 20 जों की रोटियां और बोरे में कुछ बाले लाकर भेंट में दी। एलिशा ने आदेश दिया, यह सब भविष्यद्वक्ता मंडल के भविष्यवक्ताओं में बांट दिया जाए कि वे भोजन कर ले। सेवक ने प्रश्न किया, यह भोजन 100 व्यक्तियों के सामने कैसे रखा जाए। एलिशा ने अपना आदेश दोहराया, यह भोजन भविष्यद्वक्ता मंडल के भविष्यवक्ताओं को परोस दो कि वे इसे खा सके, क्योंकि यह यहावे का संदेश है, उनके खा चुकने के बाद भी कुछ भोजन बाकी रह जाएगा। तब सेवक ने भोजन परोस दिया। वे खाकर तृप्त हुए और कुछ भोजन बाकी भी रह गया, जैसा यहावे ने कहा था। राजाओं की दूसरी पुस्तक अध्याय 5। नामान की शुद्धि। आराम के राजा की सेना का सेनापति नामान एक अद्भुत प्रतिभा का व्यक्ति था। वह राजा का प्रियजन और आदर के योग्य व्यक्ति था, क्योंकि उसके द्वारा यहावे ने आराम को विजय दिलाई थी। वह पराक्रमी वीर योद्धा था, मगर उसे कुष्ठ रोग था। एक मौके पर जब आराम के सैनिकों ने छापा मारा, वे इसराइल देश से एक कम उम्र की लड़की अपने साथ ले गए। यह लड़की नामान की पत्नी की सेविका के रूप में काम करती थी। इस लड़की ने अपनी स्वामिनी से कहा, भला होता कि स्वामी उस भविष्यद्वक्ता से मिल सकते जो शमरिया में रहते हैं, वह स्वामी के कुष्ठ रोग को शुद्ध कर सकते हैं। नामान ने अपने स्वामी राजा के सामने इस तरह इसका ब्योरा किया, इसराइल से लाई गई एक लड़की ने मुझे ऐसा ऐसा बताया है। आराम के राजा ने नामान से कहा, तुम इसी समय वहां चले जाओ, मैं तुम्हें इसराइल के राजा के लिए एक पत्र दिए देता हूँ। तब नामान ने प्रस्थान किया। उसने अपने साथ भेंट में देने के लिए लगभग 350 किलो चांदी, 70 किलो सोना और 10 जोड़ी कीमती वस्त्र रख लिए थे। वह अपने साथ इसराइल के राजा को आराम के राजा द्वारा लिखा गया पत्र ले गया था, जिसमें इस प्रकार लिखा गया था, जब यह पत्र आपके हाथों में पहुंचेगा, आप यह समझ ले कि मैं अपने सेवक नामान को आपके पास भेज रहा हूं कि आप इसे इसके कुष्ठ रोग से शुद्ध कर दें। जब इज़राइल के राजा ने यह पत्र पढ़ा, उसने अपने कपड़े फाड़ते हुए कहा, क्या मैं परमेश्वर हूँ जो किसी के प्राण लूँ या किसी को दोबारा जीवित करूँ कि यह व्यक्ति कुष्ठ रोगी की शुद्धि के लिए मुझसे विनती कर रहा है? जरा रुक कर विचार तो करो और देख लो कि यह मुझसे झगड़ने का बहाना ढूंढ रहा है। मगर जब परमेश्वर के जन एलीशा को राजा द्वारा अपने कपड़े फाड़े जाने की घटना के बारे में मालूम हुआ, उन्होंने राजा को यह संदेश भेजा, आपने क्यों अपने कपड़े फाड़ दिए हैं? अब आप उससे कहिए कि नामान आकर मुझसे भेंट करे कि उसे यह मालूम हो जाए कि इज़राइल देश में एक भविष्यद्वक्ता है। तब नामान अपने घोड़ों और रथों सहित एलीशा के दरवाजे पर जा खड़ा हुआ। एलीशा ने दूत द्वारा नामान को यह संदेश दिया, जाकर यर्दन नदी में 7 बार नहा लो, तुम्हारा शरीर पहले के समान स्वस्थ हो जाएगा और तुम शुद्ध हो जाओगे। यह सुन नामान बहुत ही क्रोधित हो वहां से लौट गया। वह मन में सोच रहा था, देखो तो मैं विचार कर रहा था, भविष्यद्वक्ता जरूर बाहर आएंगे, मेरे पास आ खड़े होकर यहावे अपने परमेश्वर के नाम की दोहाई देंगे, मेरी रोगी देह पर अपना हाथ लहराएंगे और इस प्रकार मेरे कुष्ठ रोग को ठीक कर देंगे। अरे क्या दमिश्क की अबाना और फारपर नदियां इज़राइल के जल से कहीं ज्यादा अच्छी नहीं है? क्या मैं उनमें नहाकर शुद्ध ना हो सकता था? तब नामान वहां से बड़े ही क्रोध में भरकर लौटने लगा। यह देख उसके सेवक उसके पास आ उससे कहने लगे, पिताश्री, यदि भविष्यद्वक्ता ने आपको कोई भारी काम करने का आदेश दिया होता तो क्या आप वह ना करते? उन्होंने तो सिर्फ यह कहा है, जाकर स्नान करो और शुद्ध हो जाओ। यह सुन नामान गया, यर्दन नदी में 7 बार डुबकी लगाई, जैसा परमेश्वर के जन ने आदेश दिया था। उसकी देह छोटे बालक के समान हो चुकी थी, वह शुद्ध हो गई थी। तब नामान अपने सारे झुंड के साथ लौटकर परमेश्वर के जन के घर पर गया और घर के सामने खड़ा हो भविष्यद्वक्ता को संबोधित कर कहने लगा, सुनिए, अब मैं जान गया हूं कि सारी पृथ्वी पर इज़राइल के परमेश्वर के अलावा कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है। तब अपने सेवक की ओर से यह भेंट स्वीकार कीजिए। मगर एलीशा ने उत्तर दिया, जीवित यहावे की शपथ, मैं जिनका सेवक हूं मैं कुछ भी स्वीकार नहीं करूंगा। नामान विनती करता रहा, मगर एलीशा इनकार करते रहे। अंत में नामान ने कहा, अच्छा, अगर और कुछ नहीं तो आपके सेवक को 2 खच्चरों के बोझ के बराबर की यहां की मिट्टी ले जाने दी जाए, क्योंकि अब इसके बाद आपका सेवक यहावे के अलावा किसी भी पराये देवता को ना होमबलि चढ़ाएगा और ना ही बलि। इस विषय में यहावे मुझे आपके सेवक को क्षमा करे। जब मेरे स्वामी आराधना के लिए रिमोन में आराधना भवन को जाते हैं, उन्हें मेरी बाह के सहारे की जरूरत होती है, मुझे भी रिमोन के भवन में सिर झुकाना पड़ जाता है। इस बारे में यहावे अपने सेवक को क्षमा प्रदान करें। एलीशा ने नामान से कहा, आप यहावे की शांति में यहां से विदा हो जाइए। नामान वहां से कुछ ही दूर गया था। परमेश्वर के जन एलीशा के सेवक गेहजी ने मन में विचार किया, मेरे स्वामी ने तो भेंट स्वीकार ना करके आरामवासी नामान को यूं ही छोड़ दिया है। जीवित यहावे की शपथ, मैं दौड़कर उसके पीछे जाऊंगा और उसे कुछ तो ले ही लूंगा। तब गेहजी नामान के पीछे दौड़ा। जब नामान को लगा कि कोई उसके पीछे दौड़ा आ रहा है, वह अपने रथ से उतर पड़ा कि उससे भेंट करे। नामान ने गेहजी से पूछा, सब कुशल तो है ना? गेहजी ने उत्तर दिया, हाँ, सब कुशल है। स्वामी ने मुझे आपसे यह विनती करने भेजा है, एफ्राइम के पहाड़ी इलाके से भविष्यवक्ताओं के 2 युवक यहाँ आ गए हैं, कृपया मुझे उन्हें भेंट में देने के लिए 1 तालांत चांदी और 2 जोड़ी अच्छे कपड़े दे दीजिए। नामान ने उत्तर दिया, 1 ही क्यों, आप खुशी से 2 तालांत चांदी ले जाइए। और नामान ने सागरा दो थैलों में दो तालांत चांदी और दो जोड़े वस्त्र बांध दिए और यह सब अपने दो सेवकों को दिया, जिसे लेकर वे गेहेजी के आगे आगे चले गए। जब वे पहाड़ी तक पहुंचे, गेहेजी ने थैले उनसे लेकर अपने घर में रख लिए और उन दोनों को विदा कर दिया और वे वहां से चले गए। गेहेजी जाकर अपने स्वामी के सामने खड़ा हो गया। एलीशा ने गेहेजी से पूछा, कहाँ गया था गेहेजी? उसने उत्तर दिया, आपका सेवक कहीं नहीं गया था। मगर एलीशा ने उससे कहा, क्या मेरी आत्मा वहां ना थी जब वह व्यक्ति तुमसे भेंट करने लौटकर तुम्हारी ओर आया था? क्या धन और वस्त्र लेने के लिए सही मौका यही था कि जैतून के बगीचे, अंगूर के बगीचे, भेड़े, बैल, दास दासियां पाई जाए? नामान का कुष्ठ रोग तुम पर और तुम्हारे वंशजों पर स्थायी रूप से आ जाएगा। तब वह एलीशा के सामने हिम के समान सफेद घोर कुष्ठ रोगी होकर बाहर चला गया। राजाओं की दूसरी पुस्तक अध्याय 6। कुल्हाड़ी की पुनर्प्राप्ति। भविष्य वक्ताओं के दल ने एलीशा से विनती की, सुनिए, आपके द्वारा हमारे लिए ठहराया गया घर अब छोटा पड़ रहा है। हमें आज्ञा दीजिए कि हम सब यर्दन नदी के तट पर जाए और हम में से हर एक वहां से एक एक बल्ली काटे और हम वहां अपने लिए घर बनाएंगे। एलीशा ने आज्ञा दे दी, जाओ। उनमें से एक ने एलीशा से विनती की, अपने सेवकों के साथ चलने की कृपा कीजिए। एलीशा ने हाँ कह दिया, अच्छा मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तब वह उनके साथ चले गए। जब वे यर्दन के तट पर आए, उन्होंने पेड़ काटना शुरू किया। उनमें से एक भविष्यद्वक्ता बल्ली काट रहा था, तब उसकी कुल्हाड़ी की फाल पानी में जा गिरी। वह भविष्यद्वक्ता चिल्ला उठा, ओह मेरे स्वामी, वह तो उधार की फाल थी। इस पर परमेश्वर के जन ने उससे पूछा, किस जगह पर गिरी है वह? जब उसने उन्हें वह जगह दिखाई, भविष्यद्वक्ता ने एक छड़ी काटी और उस जगह पर फेंक दी। लोहे की वह फाल पानी पर तैरने लगी। एलीशा ने उसे आदेश दिया, इसे उठा लो। तब उसने हाथ बढ़ाकर उसे उठा लिया। घोड़े और अग्निरथ। उस मौके पर जब आराम का राजा इज़राइल से युद्ध करता था, उसने अपने सेवकों की सलाह के अनुसार निर्णय लिया, मेरा तंबू अमूक जगह पर होगा। परमेश्वर के जन ने इज़राइल के राजा को यह संदेश भेजा, सावधान रहिए, आरामी सेना वहीं पहुंच रही है, तब उस स्थान के निकट से होकर ना जाइएगा। इज़राइल का राजा उसी स्थान को अपनी सेना भेजा करता था जिसके विषय में उसे परमेश्वर के जन द्वारा सूचना मिली थी। इस प्रकार उसे चेतावनी मिलती रहती थी, फलस्वरूप वह अपने आप की सुरक्षा कर लेता था। यह अनेक बार हुआ। इससे आराम के राजा का मन बहुत ही घबरा गया। उसने अपने सेवकों की सभा बुलाकर उनसे प्रश्न किया, क्या आप लोग मुझे यह बताएंगे कि हम में से कौन है जो इज़राइल के राजा की ओर है? एक सेवक ने उत्तर दिया, कोई भी नहीं महाराज। हाँ, इज़राइल में एक भविष्यद्वक्ता है, एलीशा। वह इज़राइल के राजा को आपके द्वारा आपके कमरे में कहे गए शब्दों तक की सूचना दे देता है। आराम के राजा ने आदेश दिया, जाओ मालूम करो कहाँ है यह भविष्यद्वक्ता, कि मैं सैनिक भेज उसे पकड़वा सकूं। राजा को सूचित किया गया, महाराज वह भविष्यद्वक्ता दोथान में छिपा हुआ है। राजा ने उस स्थान के लिए घोड़े, रथ और एक बड़ी सैनिक टुकड़ी भेज दी। रात में वहां पहुंचकर उन्होंने उस नगर को घेर लिया। तड़के जब परमेश्वर के जन का सेवक जागा, उसने बाहर जाकर देखा कि सेना, घोड़े और रथ नगर को घेरे हुए है। सेवक कह उठा, हाय मेरे स्वामी, अब हम क्या करें? एलीशा ने उत्तर दिया, डरो मत, क्योंकि वे जो हमारे साथ हैं, गिनती में उनसे अधिक है जो उनके साथ हैं। तब एलीशा ने यह प्रार्थना की, यहावे कृपा कर इसे दृष्टि दीजिए कि यह देख सके। तब यहावे ने उस युवा सेवक को दृष्टि दी और उसने देखा एलीशा के चारों ओर पहाड़ घोड़ों और अग्निरथों से भरा हुआ था। जब आरामी सेना एलीशा को पकड़ने के लिए आगे बढ़ी, एलीशा ने यहावे से यह प्रार्थना की, कृपा कर इन लोगों की दृष्टि छीन लीजिए। तब एलीशा की प्रार्थना के अनुसार यहावे ने उन्हें अंधा कर दिया। उन्हें एलीशा ने कहा, ना तो यह वह मार्ग है और ना ही यह वह नगर, मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें उस व्यक्ति तक ले जाऊंगा जिसे तुम खोज रहे हो। तब एलीशा ने उन्हें शमरिया पहुंचा दिया। जैसे ही उन्होंने शमरिया में प्रवेश किया, एलीशा ने प्रार्थना की, यहावे इन व्यक्तियों की दृष्टि लौटा दीजिए कि अब ये देख सके। तब यहावे ने उन्हें दृष्टि प्रदान की। उन्होंने देखा और पाया कि वे शमरिया में है। जैसे ही इसराइल के राजा ने उन्हें देखा, वह एलीशा से कहने लगा, मेरे पिताजी, क्या हम उन पर वार करें? बताइए, क्या हम उन पर वार करें? एलीशा ने उत्तर दिया, तुम्हारा उन पर हमला करना सही ना होगा। क्या उन बंदियों की हत्या की जाती है जिन्हें तुम तलवार और धनुष के द्वारा बंदी बनाते हो? उन्हें भोजन परोसो कि वे खा पीकर तृप्त हो जाए और अपने स्वामी के पास लौट जाए। तब उनके लिए एक उत्तम भोज तैयार किया गया। जब वे खा पीकर तृप्त हो गए, इसराइल के राजा ने उन्हें विदा किया और वे अपने स्वामी के पास लौट गए। इस घटना के बाद अरामी फिर कभी इसराइल पर हमला करने नहीं आए। बेन हदद द्वारा शमरिया की घेराबंदी। कुछ समय के बाद अराम के राजा बेन हदद ने अपनी सारी सेना तैयार की और शमरिया पर हमला किया और नगर की घेराबंदी कर ली। शमरिया में इस समय भयंकर अकाल फैल गया। शत्रु सेना ने इसे घेर रखा था। स्थिति ऐसी हो चुकी थी कि गधे का सिर चांदी के 80 शेकेलों में और एक चौथाई कबूतर की बीट 5 शेकेल में बेची जा रही थी। एक दिन इसराइल का राजा नगर की शहरपनाह पर चलता हुआ जा रहा था। एक स्त्री ने उससे ऊंचे स्वर में कहा, महाराज, मेरे स्वामी, सहायता कीजिए। राजा ने उत्तर दिया, यदि यहावे ही तुम्हारी सहायता नहीं करते तो मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ, क्या खलिहान से या अंगूर रस के कुंड से? राजा ने फिर आगे यह भी पूछा, क्या तकलीफ है तुम्हें? स्त्री ने उत्तर दिया, इस स्त्री ने मुझसे कहा था, आज मुझे अपना पुत्र दे दो कि वह हमारा आज का भोजन हो जाए। कल मेरा पुत्र हमारा भोजन हो जाएगा। तब हमने मेरे पुत्र को पकाकर खा लिया। दूसरे दिन मैंने इसे याद दिलाया, लाओ अपना पुत्र को ताकि वह हमारा भोजन हो जाए, मगर इसने तो अपना पुत्र छिपा दिया है। जब राजा ने उस स्त्री के ये शब्द सुने, उसने अपने कपड़े फाड़ दिए। इस समय वह शहर पनाह पर टहल रहा था। लोगों ने यह सब देखा। उन्होंने इस बात पर भी ध्यान दिया कि वह राजसी वस्त्रों के भीतर टाट पहने हुआ था। राजा ने घोषणा की, परमेश्वर मेरे साथ ऐसा ही बल्कि इससे भी कड़ा व्यवहार करे। यदि आज शाफात के पुत्र एलीशा का सिर उसके धड़ से लगा रह जाए। एलीशा अपने घर में बैठे हुए थे, उनके साथ नगर पुरनिय भी बैठे हुए थे। इसी समय राजा द्वारा भेजा दूत यहीं आ रहा था। अभी यह व्यक्ति यहां नहीं पहुंचा था, मगर एलीशा अपने साथ के पुरनियों से कह रहे थे, देखो इस हत्यारे को, उसने मेरा सिर उड़ाने के लिए एक दूत भेजा है। ऐसा कीजिए, जैसे ही वह दूत यहां पहुंचे, दरवाजा बंद कर ले और उसे अच्छी तरह से बंद किए रखे। उसका स्वामी उससे अधिक दूर नहीं होगा। एलीशा उनसे यह कह ही रहे थे कि उस दूत ने उनके पास आकर उनसे कहा, यह मुसीबत यहावे की ओर से है, अब मैं आगे यहावे का इंतजार और क्यों करता रहूं? राजाओं की दूसरी पुस्तक अध्याय 7। एलीशा ने उसे उत्तर दिया, यहावे का संदेश सुनो, यहावे की प्रतिज्ञा है। कल लगभग इसी समय शमरिया के द्वार पर चांदी के एक सिक्के में 3 किलो मैदा और चांदी के एक सिक्के में 6 किलो जौ बिकने लगेगा। तब उस राजकीय अधिकारी ने, जिसके हाथ की टेक राजा लिया करते थे, परमेश्वर के जन से कहा, यदि खुद यहावे आकाश के झरोके खोल दे तब भी क्या यह संभव है? मगर एलीशा ने उसे उत्तर दिया, यह तुम खुद अपनी आंखों से तो देखोगे, मगर इनको खा नहीं पाओगे। अरामियों का पलायन। उस समय नगर फाटक पर 4 कुष्ठ रोगी थे। उन्होंने आपस में सलाह मशवरा किया, मृत्यु आने तक हम यहीं क्यों बैठे रहे? यदि हम विचार करें, चलो नगर में, तो वहां भयंकर अकाल है, मृत्यु वहां भी तय है। यदि हम यहीं बैठे रहते हैं तब भी मृत्यु तय ही है, इसलिए चलो हम आरामियों के तंबू में चले। यदि वे तरस खाकर हमें जीवन दान दे तो हम जीवित रह जाएंगे। यदि वे हमारी हत्या करना चाहे तो वैसे भी हमारी मृत्यु तो तय है ही। तब शाम होते वे चारों उठे और आरामियों की छावनी की ओर बढ़े। जब वे छावनी की सीमा पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां कोई भी ना था। कारण यह था कि यहावे ने ऐसा किया कि आरामी सेना को घोड़ों और रथों की आवाज सुनाई दी गई, मानो एक बड़ी सेना चली आ रही हो। तब आराम के सैनिक आपस में यह विचार करने लगे, सुनो सुनो, इज़राइल के राजा ने हम पर हमला करने के लिए हित्ती और मिस्री राजाओं को भाड़े पर ले लिया है। तब आरामी सैनिक अपने अपने तंबू वैसे ही छोड़कर भाग गए। वे अपने पीछे अपने घोड़े और अपने गधे तक छोड़ गए। जब ये चार कुष्ठ रोगी शिविर की सीमा तक आए, वे छावनी के भीतर गए और तृप्त होने तक भोजन किया। वे अपने साथ सोना, चांदी और उत्तम वस्त्र भी लेते गए, जिन्हें उन्होंने ले जाकर छिपा दिया। फिर वे लौटकर अन्य छावनी में गए और वहां से भी ऐसा ही सामान ले जाकर छिपा दिया। तब वे आपस में विचार विमर्श करने लगे, हम यह ठीक नहीं कर रहे। आज का दिन शुभ संदेश का दिन है। यदि हम इसको देने के लिए सुबह तक ठहरे रहेंगे तो हम दंड के अधिकारी हो जाएंगे। सो आओ हम जाकर राज परिवार को बता दें। तब उन्होंने जाकर नगर के द्वारपालों को पुकारा और उन्हें सूचित किया, हम आरामियों की छावनी तक गए थे और हमने देखा कि वहां कोई भी सैनिक नहीं है। वहां ना किसी व्यक्ति का स्वर सुनाई दे रहा है और ना ही कोई दिखाई दे रहा है, सिवाय वहां बंधे हुए घोड़ों, गधों और शांत तंबुओं के। यह सुन द्वारपालों ने ऊंचे स्वर में पुकारा और यह समाचार राजमहल तक पहुंचा दिया। राजा रात में ही उठ गया और अपने सेवकों से कहा, मैं तुम्हें बता रहा हूं कि आरामियों ने हमारे साथ क्या किया है। उन्हें यह मालूम है कि हम भूखे हैं, इसलिए वे छावनी को खाली छोड़ मैदान में जा छिपे हैं। उनका विचार है कि जब हम नगर से बाहर निकलेंगे वे हमें जीवित पकड़कर नगर में ले आएंगे। उनके एक सेवक ने सुझाव दिया, हम बाकी रह गए घोड़ों में से 5 को कुछ सैनिकों के साथ वहां भेज दें। वैसे भी जो सैनिक यहां बचे रह गए हैं उनकी स्थिति उनसे ज्यादा अलग नहीं है जिनकी मृत्यु हो चुकी है। हम इन्हें वहां की स्थिति मालूम करने के लिए भेज दें। तब राजा ने घोड़े जूते 2 रथों को आरामी सेना की स्थिति मालूम करने के लिए भेज दिया। उसका आदेश था, जाकर स्थिति की पता करो। ये दोनों उस मार्ग पर उनके पीछे पीछे चलते रहे। उन्होंने यर्दन तक जाकर देखा कि सारे मार्ग पर वस्त्र और हथियार बिखरे पड़े हैं, जो आरामी उतावली में भागते समय फेंक गए थे। वे भेदिए लौट आए और राजा को इसकी खबर दे दी। यह सुन प्रजा बाहर निकल आई और उन्होंने आरामियों के शिविर को लूट लिया। परिणाम स्वरूप ठीक यहावे की भविष्यवाणी के अनुसार 3 किलो मैदा चांदी के 1 सिक्के में और 6 किलो जौ भी चांदी के 1 सिक्के में बिकने लगा। राजा ने उस राजकीय अधिकारी को, वह जिसके हाथ का टेक लेता था, द्वार पर नियुक्त कर रखा था, वह लोगों की इस भगदड़ में द्वार पर ही रौंदा गया और उसकी मृत्यु हो गई। ठीक परमेश्वर के जन एलिशा द्वारा की गई भविष्यवाणी के अनुसार जब राजा ने उन्हें बंदी बनाने की कोशिश की थी, यह ठीक वैसा ही हुआ जैसा परमेश्वर के जन ने राजा के लिए यह भविष्यवाणी की थी। लगभग इसी समय कल चांदी के 1 सिक्के में 3 किलो मैदा और चांदी के 1 सिक्के में 6 किलो जौ शमरिया के फाटक पर बिकने लगेगा। इस अधिकारी ने परमेश्वर के जन पर उत्तर में कटाक्ष किया था, यदि स्वयं यहावे आकाश के झरोखे खोल दे तब भी क्या यह संभव है। इसके उत्तर में परमेश्वर के जन एलिशा ने कहा था, यह सब तुम स्वयं अपनी आंखों से तो देखोगे मगर इनका इस्तेमाल ना कर सकोगे। उसके साथ ठीक यही हुआ। वह लोगों की भगदड़ में फाटक पर ही रौंदा गया और उसकी मृत्यु हो गई। राजाओं की दूसरी पुस्तक अध्याय 8। शूनामी स्त्री की संपत्ति का प्रत्यावर्तन। एलीशा ने जिस स्त्री के पुत्र को जीवित किया था उससे वह कह चुके थे, यहां से अपनी गृहस्थी लेकर जहां चाहे वहां चली जाओ, क्योंकि यहावे की ओर से इस देश पर एक अकाल भेजा जा रहा है और जिसकी अवधि 7 साल की होगी। तब उस स्त्री ने परमेश्वर के जन के आदेश के अनुसार ही किया। वह अपनी सारी गृहस्थी को लेकर फिलिस्तीनियों के देश में रहने लगी। 7 साल पूरे होने पर जब वह फिलिस्तीनियों के देश से लौटकर आई, उसने राजा से भेंट कर अपनी भूमि और घर के वापस लेने की विनती की। इस समय राजा परमेश्वर के जन के सेवक गेहेजी से बातें करने में मगन था। वह कह रहा था, मुझे एलीशा द्वारा किए गए सभी अद्भुत कामों के बारे में बताओ। जब गेहेजी एलीशा द्वारा मृतकों को जीवित किए जाने की घटना को बता रहा था, ठीक उसी समय पर यह स्त्री अपनी संपत्ति के वापस मिलने का आग्रह लेकर आ उपस्थित हुई। उसे देख गेहेजी कह उठा, महाराज मेरे स्वामी, यही तो है वह स्त्री और यही है उसका वह पुत्र जिसे एलीशा ने जीवित किया है। राजा द्वारा उस स्त्री से पूछताछ किए जाने पर उस स्त्री ने सारी बातों का ब्यौरा कर दिया। तब राजा ने उसके लिए इस आदेश के साथ एक अधिकारी नियुक्त कर दिया, जो कुछ इस स्त्री का था वह सब इसे लौटा दिया जाए, और जिस दिन से यह देश छोड़कर गई थी तब से आज तक की भूमि की सारी उपज भी। हाजाइल द्वारा बेन हदद की हत्या। एलीशा दमिश्क आए, आराम का राजा बेन हदद बीमार था। उसे यह सूचना दी गई, परमेश्वर के जन यहां आए हुए हैं। राजा ने हाजाइल को आदेश दिया, अपने साथ भेंट लेकर परमेश्वर के जन के पास चले जाओ, उनके द्वारा यहावे से यह मालूम करो कि मुझे इस रोग से मुक्ति मिल जाएगी या नहीं। तब हाजाइल दमिश्क की हर एक प्रकार की उत्कृष्ट वस्तुएं ऊँटों पर लदवाकर भेंट के लिए चल पड़ा। जब वह वहां पहुंचकर एलीशा के सामने खड़ा हुआ, उसने परमेश्वर के जन से विनती की, मुझे आपके पुत्र आराम के राजा बेन हदद ने भेजा है, उन्होंने पूछा है क्या मुझे इस रोग से मुक्ति मिल जाएगी। एलीशा ने उसे उत्तर दिया, जाकर उनसे कहो आप रोग मुक्त तो अवश्य हो जाएंगे, किंतु वस्तुते यहावे ने मुझ पर यह प्रकट किया है कि निश्चयतः उसकी मृत्यु हो जाएगी। तब एलीशा हाजाइल की ओर तब तक टकटकी बांधकर देखते रहे जब तक हाजाइल लज्जित ना हो गया। तब परमेश्वर का जन रोने लगा। हाजाइल ने उनसे पूछा, मेरे स्वामी आप रोने क्यों लगे। एलीशा ने उत्तर दिया, क्योंकि वह बुरा जो तुम इज़राइली प्रजा के साथ करोगे मैं उसे जानता हूँ। तुम उनके गढ़ों में आग लगा दोगे, तुम तलवार से उनके युवाओं की हत्या कर दोगे, उनके शिशुओं को पटक पटक कर टुकड़े टुकड़े कर दोगे और गर्भवती स्त्रियों का पेट चीर दोगे। हाजाइल ने उनसे कहा, आपका सेवक है ही क्या, मात्र एक कुत्ता जो वह इस सीमा तक पतित कार्य करे। एलीशा ने उत्तर दिया, यहावे ने मुझ पर यह प्रकट किया है कि तुम आराम के राजा हो जाओगे। तब हाजाइल एलीशा की उपस्थिति से जाकर अपने स्वामी की उपस्थिति में पहुंचा। राजा ने उससे पूछा, क्या कहा है एलीशा ने तुमसे। उसने उत्तर दिया, उन्होंने कहा है कि आप जरूर निरोगी हो जाएंगे। दूसरे दिन हाजाइल ने एक कंबल ले उसे जल में डुबोया और बेन हदद के मुख पर फैला दिया और उसे वहीं रहने दिया जब तक उसकी मृत्यु ना हो गई। तब हाजाइल उसके स्थान पर राजा बन गया। यहूदिया में यहोराम का राज्य। इज़राइल के राजा अहाब के पुत्र यहोराम के शासनकाल के 5वें साल में यहोशाफात के पुत्र यहोराम ने यहूदिया पर शासन शुरू किया। जब वह राजा बना उसकी उम्र 32 साल थी और उसने यरूशलेम में 8 साल शासन किया। उसका आचरण इज़राइल के राजाओं के समान था। उसने वही किया जो अहाब के वंश ने किया था, क्योंकि उसने अहाब की पुत्री से विवाह किया था। वह वही करता था जो यहावे की दृष्टि में गलत था। फिर भी दाविद से की गई अपनी प्रतिज्ञा के कारण यहावे यहूदिया को नष्ट नहीं करना चाहते थे, यहावे ने प्रतिज्ञा की थी कि दाविद और उनके पुत्रों के लिए एक दीपक सदैव जलाए रखेंगे। यहोराम का शासनकाल में एक मौका ऐसा आया जब एदोम ने यहूदिया के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और अपने लिए स्वयं एक राजा चुन लिया। इस पर यहोराम अपने रथों को लेकर जेर नगर के निकट से आगे बढ़ा। उसने रात में उठकर एदोमी सेना पर हमला कर दिया, जिन्होंने उसकी सेना और सैन्य अधिकारियों को घेर लिया था, किंतु यहोराम की सेना पीठ दिखाकर भाग गई। फलस्वरूप एदोम आज तक इसराइल के विरुद्ध विद्रोह की स्थिति में है। इसी समय लिबना ने भी विद्रोह कर दिया था। यहोराम की बाकी उपलब्धियों और सारे कामों का ब्यौरा यहूदिया के राजाओं की इतिहास की पुस्तक में किया गया है। यहोराम अपने पूर्वजों के साथ हमेशा की नींद सो गया और दाविद के नगर में उसके पूर्वजों के साथ उसे गाड़ा गया। उसके स्थान पर उसके पुत्र अहज्या ने शासन करना शुरू किया। यहूदिया पर अहज्या का शासन। इसराइल के राजा अहाब के पुत्र योराम के शासनकाल के 12वें साल में यहूदिया के राजा यहोराम के पुत्र अहज्या ने शासन करना शुरू किया। जब अहज्या ने शासन शुरू किया उसकी उम्र 22 साल थी। उसने यरूशलेम में 1 साल राज्य किया। उसकी माता का नाम अथालिया था। वह इसराइल के राजा ओमरी की पोती थी। अहज्या का आचरण वैसा ही था जैसा अहाब के वंश का। उसने वही किया जो यहावे की दृष्टि में गलत था, ठीक जैसा अहाब के परिवार ने भी किया था, क्योंकि अहज्या अहाब के परिवार का दामाद था। उसने अहाब के पुत्र योराम के साथ मिलकर अराम के राजा हजाइल से रामोत गिलाद में युद्ध छेड़ दिया। अरामी सेना ने योराम को घायल कर दिया। रामा में अराम के राजा हजाइल से युद्ध करते हुए राजा योराम को जो घाव लगे थे उनसे स्वस्थ होने के लिए राजा योराम येज़रील को लौट गया। यहूदिया के राजा यहोराम का पुत्र अहज्या अहाब के पुत्र योराम की स्थिति को देखने येज़रील गया, क्योंकि योराम बीमार था। राजाओं की दूसरी पुस्तक अध्याय 9। इसराइल के राजा लिए येहू का राज अभिषेक। भविष्यद्वक्ता एलीशा ने भविष्यद्वक्ता मंडल के एक भविष्यद्वक्ता को आदेश दिया, कमर बांधो, अपने हाथ में यह तेल की कुप्पी लो और रामोत गिलाद चले जाओ। वहां पहुंचकर निमशी के पोते यहोशफात के पुत्र येहू नामक व्यक्ति को खोजना। वहां तुम उसके कमरे में जाना, वह अपने साथियों के साथ बैठा होगा। उसे खड़े होने को कहना और उसे अंदर के कमरे में ले जाना। तब इस तेल की कुप्पी का तेल उसके सिर पर उंडेल देना और कहना, यह संदेश यहावे की ओर से है, मैं तुम्हें इसराइल का राजा अभिषिक्त करता हूँ। तब द्वार खोलकर वहां से बिन देर किए भाग जाना। तब वह युवा भविष्यद्वक्ता एलीशा का सेवक रामोत गिलाद के लिए चला। वहां पहुंचकर उसने देखा कि सेनापति की समिति का सत्र चल रहा था। युवा भविष्यद्वक्ता ने घोषणा की, सेनापति महोदय, मेरे पास आपके लिए एक संदेश है। येहू ने उत्तर दिया, हम सब में से किसके लिए? भविष्यद्वक्ता ने उत्तर दिया, सेनापति जी आपके ही लिए। तब येहू उठा और घर के भीतर चला गया। युवा भविष्यद्वक्ता ने तुरंत यह कहते हुए उसके सिर पर तेल उंडेल दिया, यहावे इसराइल के परमेश्वर का यह संदेश है, मैं यहावे की प्रजा इसराइल के लिए तुम्हारा राज अभिषेक कर रहा हूँ। तुम अपने स्वामी अहाब के वंश को नाश करना कि मैं इसके द्वारा इजेबेल से अपने सेवक भविष्यवक्ताओं के लहू का और यहावे के सारे सेवकों के लहू का बदला ले सकूं, क्योंकि अहाब का सारा परिवार नाश होगा। मैं अहाब के वंश से हर एक पुरुष को इसराइल राष्ट्र से मिटा डालूंगा, दास या स्वतंत्र। मैं अहाब के वंश को नेबात के पुत्र यरोबोआम के समान और अहिया के पुत्र बाशा के समान बना दूंगा। येज़रील ही की सीमा के भीतर कुत्ते इजेबेल के शव को खाएंगे, कोई उसे गाड़ने भी ना पाएगा। तब युवा भविष्यद्वक्ता द्वार खोल वहां से भाग गया। जब येहू कमरे से बाहर अपने स्वामी के सेवकों के पास लौटा, वे उससे पूछने लगे, सब कुशल तो है ना? यह पागल व्यक्ति क्यों आया था तुम्हारे पास? येहू ने उन्हें उत्तर दिया, तुम लोग तो इस व्यक्ति को और उसकी हरकतों को जानते ही हो। सब एक साथ कहने लगे, नहीं नहीं, हम नहीं जानते, हमें सच सच सब बताओ। तब उसने उत्तर दिया, उसने मुझसे यह सब कहा है, यह यहावे का संदेश है, मैं तुम्हें इज़राइल का राजा अभिषिक्त कर रहा हूँ। यह सुनते ही उनमें से हर एक ने अपना अपना बाहरी वस्त्र उतारकर पत्थर की सीढ़ियों पर बिछा दिया और उन्होंने नरसिंगे के साथ घोषणा की, येहू राजा है। येहू द्वारा योराम और अहज्या की हत्या। निमशी के पोते यहोशाफात के पुत्र येहू ने योराम के विरुद्ध षड्यंत्र रचा। योना सारी इजरायली सेना के साथ आराम के राजा हाजाइल से रामोत गिलाद की रक्षा कर रहा था, मगर वास्तव में राजा यहोराम यहां आरामी सेना से लगे घावों से स्वस्थ होने के उद्देश्य से येजरी लौट आया था। ये घाव उसे आराम के राजा हाजाइल से युद्ध करते हुए आरामी सेना द्वारा लगे थे। येहू ने यहां यह घोषणा की, यदि तुम सभी का यही मानना है कि मैं अब राजा हूं, तो किसी को भी नगर से बाहर ना जाने दिया जाए कि यह समाचार येजरील ना पहुंच सके। तब येहू अपने रथ पर येजरील जा पहुंचा, क्योंकि इस समय योराम वहीं येजरील में था। यहूदिया का राजा अहज्या इस समय योराम का कुशल मंगल पता करने यहां आया हुआ था। येजरील की शहरपना पर पहरेदार खड़ा हुआ था। येहू और उसके साथ बढ़ते चले आ रहे दल को देखकर उसने सूचना दी, मुझे एक दल दिखाई दे रहा है। यहोराम ने आदेश दिया, एक घुड़सवार उनसे भेंट करने भेजा जाए, जो उसे देख उससे पूछे, शांति में ही आ रहे हो ना? तब उससे भेंट करने एक घुड़सवार गया। उसने येहू से कहा, राजा ने पूछा है, शांति के लिए ही आ रहे हो ना? येहू का उत्तर था, तुम्हें शांति से क्या लेना देना, मुड़कर हमारा अनुसरण करो। वहां पहरेदार ने यह सूचना फैला दी, दूत वहां पहुंचा तो जरूर, मगर वह लौटकर नहीं आ रहा। इस पर एक दूसरे घुड़सवार को भी भेजा गया, जो उनके पास पहुंचा, जिसने येहू से कहा, यह राजा का संदेश है, क्या सब कुशल मंगल है? येहू ने उसे उत्तर दिया, क्या लेना देना है तुम्हारा कुशल मंगल से, मुड़कर हमारा अनुसरण करो। पहरेदार ने दोबारा सूचना फैला दी, वह उनके पास पहुंचा तो जरूर, मगर वह लौटकर नहीं आ रहा। घुड़सवार का व्यवहार निमशी के पुत्र येहू समान है, क्योंकि घोड़ा तेजी से दौड़ाया जा रहा है। यहोराम ने आदेश दिया, तैयारी की जाए। योराम का रथ तैयार किया गया। तब इज़राइल का राजा योराम और यहूदिया का राजा अहज्या दोनों ही अपने अपने रथों पर येहू से भेंट करने चल पड़े। येहू से उनकी भेंट येज़रील वासी नाबोत की भूमि पर हुई। येहू को देखते ही यहोराम ने उससे पूछा, येहू क्या सब कुशल मंगल है? येहू ने उत्तर दिया, कैसे हो सकती है शांति, जब राज्य में आपकी माता इजेबेल की देखरेख में वैश्यवृत्ति और जादू टोना फैलते जा रहे हैं। यह सुनते ही यहोराम ने घोड़े को हांकते हुए अहज्या से कहा, देशद्रोह, अहज्या देशद्रोह। येहू ने पूरी शक्ति लगाकर धनुष ताना और यहोराम के दोनों कंधों के बीच निशाना साधकर बाण छोड़ दिया। बाण ने योराम के हृदय को बेध दिया और वह अपने रथ में ही ढेर हो गया। येहू ने अपने सहायक बिदकर को आदेश दिया, उसे उठाकर येज़रील वासी नाबोत की भूमि पर फेंक दो। तुम्हें वह समय याद होगा जब तुम और मैं साथ साथ उसके पिता अहाब के पीछे पीछे जा रहे थे, स्वयं यहावे ने कैसे उसके विरुद्ध यह घोषणा की थी। ठीक जिस प्रकार कल मैंने नाबोत और उसके पुत्रों का खून खराबा देखा था, यह यहावे का संदेश है, तुम्हारा बदला मैं इसी भूमि पर लूंगा, इसलिए अब उसे उठाओ और उसे उसी भूमि पर फेंक आओ। जब यहूदिया के राजा अहज्या ने यह सब देखा, वह बेथ हगान नगर की दिशा में भागने लगा। उसका पीछा करते हुए येहू ने आदेश दिया, उस पर भी बाण चलाओ। सैनिकों ने उसे उसके रथ में ही गुर की चढ़ाई पर चढ़ते हुए मार गिराया। यह जगह इब्लीम के पास है। अहज्याह मगीदो की ओर भागा, जहां उसकी मृत्यु हो गई। उसके सेवक आकर उसे रथ में ही यरूशलेम ले गए और दाविद के नगर में उसे उसके पूर्वजों के साथ कब्र में रख दिया। अहज्याह ने अहाब के पुत्र योराम के शासनकाल के 11वें साल में यहूदिया पर शासन शुरू किया था। येहू द्वारा इजेबेल को प्राण दंड। जब येहू यज्रील नगर पहुंचा, इजेबेल को सारी घटना का समाचार मिला। उसने अपनी आंखों में काजल लगाया, बाल संवारे और खिड़की से बाहर का नजारा देखने लगी। जैसे ही येहू ने प्रवेश किया, उसने पूछा, सब कुशल तो है, अपने ही स्वामी के हत्यारे जिम्री? येहू ने खिड़की की ओर दृष्टि करते हुए कहा, कौन कौन है मेरी ओर? दो या तीन अधिकारी खोजों ने झांक कर उसकी ओर देखा। येहू ने आदेश दिया, फेंक दो उसे वहां से। तब उन्होंने उसे उठाकर वहां से नीचे फेंक दिया। उसके खून के कुछ छींटे दीवार पर और कुछ छींटे घोड़ों पर जा पड़े और घोड़ों ने उसे रौंद डाला। येहू राजघराने के भीतर गया और तृप्त होने तक भोजन किया। उसने आदेश दिया, जाकर उस शापित स्त्री को देखो, उसे गाड़ दो, क्योंकि वह राजकुमारी थी। वे उसे गाड़ने के उद्देश्य से जब उसे उठाने गए, उन्होंने पाया कि वहां सिर्फ उसकी खोपड़ी, पैर और उसके हाथों की हथेलियां ही बची थी। जब वे लौटकर येहू को बताने गए, उसने याद दिलाया, यह यहावे की भविष्यवाणी के अनुसार हुआ है जो उन्होंने अपने सेवक तिशबेवासी एलिया के माध्यम से भेजी थी। यज्रील की सीमा के ही भीतर कुत्ते इजेबेल का मांस खा जाएंगे और इजेबेल का शव यज्रील की सीमा के भीतर की भूमि पर गोबर के समान होगा कि कोई यह ना कह सके यह इजेबेल है। राजाओं की दूसरी पुस्तक अध्याय 10। येहू द्वारा अहाब के वंशजों का नष्ट किया जाना। शमरिया नगर में अहाब के 70 पुत्र थे। तब येहू ने शमरिया के शासकों पुर्नियों और अहाब के पुत्रों के पालने वालों को जो शमरिया में थे यह पत्र भेजे, जिनमें यह लिखा था, इसलिए कि आपके स्वामी के पुत्र आपकी देखरेख में है और आपके उपयोग के लिए घोड़े और रथ उपलब्ध करा दिए गए हैं, आप गढ़ में सुरक्षित रह रहे हैं और आपके पास हथियार भी है, तो यह पत्र पाते ही अपने स्वामी के पुत्रों में से सबसे अच्छे और सबसे सही को चुन लीजिए और उसे अपने स्वामी के सिंहासन पर बैठा दीजिए, फिर अपने स्वामी के वंश के लिए युद्ध करने को तैयार हो जाइए। मगर वे सभी बहुत ही डर गए थे। उनका विचार था, जब उसके सामने दो राजा भी ठहर ना सके तो हम कैसे टिक सकेंगे। तब राजघराने के अधिकारी, नगर अध्यक्ष और पुर्नियों और बालकों के पालने वालों ने येहू को यह संदेश भेजा, हम तो आपके सेवक हैं, आप जो भी आदेश देंगे हम वही पूरा करेंगे। हम किसी का राज अभिषेक नहीं करेंगे, आप वही करें जो आपकी दृष्टि में सही है। तब येहू ने उन्हें दूसरा पत्र भेजा, जिसमें उसने लिखा, बहुत बढ़िया, यदि वास्तव में आप मेरी ओर हैं, यदि आप मुझसे सहमत हैं, तो अपने स्वामी के पुत्रों के सिर लेकर मेरे पास कल इसी समय यज्रील आ जाइए। राजा के 70 पुत्र नगर के प्रतिष्ठित व्यक्तियों की देखरेख में थे, जो इनका पालन पोषण कर रहे थे। जैसे ही उन्हें येहू का पत्र मिला, उन्होंने राजकुमारों को ले जाकर उनकी हत्या कर दी, उन 70 पुत्रों की, और उनके सिर टोकरों में रख दिए। जब दूतों ने जाकर येहू को यह सूचना दी, वे राजकुमारों के सिर ले आए हैं। उसने उन्हें आदेश दिया, इन सिरों के दो ढेर बनाकर सुबह तक के लिए नगर फाटक पर रख दो। सुबह जब येहू बाहर आया, उसने खड़े होकर सारी भीड़ से कहा, आप सभी निर्दोष हैं, अपने स्वामी के विरुद्ध षड्यंत्र मैंने रचा और उनकी हत्या कर दी, मगर इन 70 की हत्या किसने की है? तब यह समझ लीजिए अहाब के वंश के बारे में यहावे द्वारा कही गई कोई भी बात व्यर्थ नहीं होगी, क्योंकि यहावे ने वह पूरा कर दिखाया है जो उन्होंने अपने सेवक एलिया द्वारा प्रकट किया था। यह कहते हुए येहू ने यज्रेल में अहाब के परिवार से संबंधित सभी बचे हुए व्यक्तियों को भी मार डाला। उसने अहाब के परिवार के बाकी व्यक्तियों, परिवार के करीबी मित्रों और पुरोहितों को भी मार दिया, कोई भी बचा ना रह गया। तब येहू यज्रेल से शमरिया के लिए निकला। मार्ग में जब वह चरवाहों के बेत एकेद नामक स्थान में था, उसकी भेंट यहूदिया के राजा अहज्या के संबंधियों से हो गई। येहू ने उनसे पूछा, आप कौन हैं? उन्होंने उत्तर दिया, हम अहज्या के संबंधी हैं। हम यहाँ आए हैं कि हम राजा और राजमाता के पुत्रों का कुशल मंगल जान सके। येहू ने आदेश दिया, जीवित पकड़ लो इन्हें। उन्होंने उन्हें जीवित पकड़ लिया और उन्हें बेत एकेद के गड्ढे पर ले जाकर उनका वध कर दिया। ये 42 लोग थे। येहू ने उनमें से एक को भी जीवित ना छोड़ा। जब वह वहां से निकले, उसकी भेंट रेखाब के पुत्र योनादाब से हुई, जो उसी से भेंट करने आ रहा था। नमस्कार के बाद उसने योनादाब से पूछा, क्या तुम्हारा मन मेरे प्रति वैसा ही सच्चा है जैसा मेरा तुम्हारे प्रति? योनादाब ने उत्तर दिया, हाँ है। तब येहू ने कहा, अगर यह सत्य है तो अपना हाथ मुझे दो। जब उसने येहू की ओर अपना हाथ बढ़ाया तो येहू ने उसे अपने रथ में खींच लिया। येहू ने उससे कहा, अब मेरे साथ चलकर यहावे के प्रति मेरा उत्साह देखना। इस प्रकार उसने योनादाब को अपने साथ रथ में ले लिया। जब वह शमरिया पहुंचा, उसने शमरिया में अहाब के सभी बचे हुए संबंधियों का वध कर दिया। वह तब तक मारता चला गया जब तक उनमें से कोई भी बाकी ना रहा, एलिया द्वारा भेजे यहावे के आदेश के अनुसार ही। येहू द्वारा बाल के पुरोहितों का संहार। तब येहू ने सारी प्रजा को इकट्ठा कर उन्हें कहा, अहाब ने बाल की उपासना सेवा कम ही की थी, येहू उसकी उपासना सेवा कहीं अधिक करेगा। तब बाल के सारे भविष्यद्वक्ता यहाँ बुलाए जाए और बाल के सारे उपासक और सारे पुरोहित भी। अनुपस्थित कोई भी ना रहे। जो अनुपस्थित होगा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। वस्तुतः यह बाल के सभी उपासकों को खत्म करने के लिए येहू की चाल थी कि कोई भी बाल की उपासना करने वाला बाकी ना रह जाए। तब येहू ने आदेश भेजा, बाल के लिए एक पावन समारोह आयोजित करो। सभी जगह उसकी घोषणा कर दी गई। येहू ने सारे इज़राइल देश से बाल के उपासक बुला लिए। कोई भी अनुपस्थित ना था। इन सब ने बाल के मंदिर में प्रवेश किया और पुजारियों से मंदिर पूरी तरह भर गया, एक कोने से दूसरे कोने तक। येहू ने तब वस्त्रागार अधिकारी को आदेश दिया, बाल के उपासकों के लिए तय किए गए वस्त्र लाए जाए। तब उनके लिए वस्त्र लाए गए। इसके बाद येहू ने बाल के मंदिर में प्रवेश किया। उसके साथ रेखाब का पुत्र योनादाब भी था। येहू ने बाल के उपासकों को कहा, खोजबीन कर यह तय कर लो कि यहाँ यहावे का कोई भी सेवक नहीं है, बल्कि सिर्फ बाल के उपासक ही है। तब उन्होंने बलियां और होम बलियां चढ़ाने का काम शुरू किया। येहू ने इसी समय के लिए भवन के बाहर 80 व्यक्ति चुने हुए थे, जिन्हें यह निर्देश दिया गया था, तुम में से जो कोई इन व्यक्तियों में से जिन्हें मैं तुम्हारे हाथों में सौंप रहा हूं किसी को भी बचकर निकलने देगा, अपने ही प्राणों से इसका दाम देगा। तब जैसे ही येहू ने होम बलि का काम पूरा किया, उसने पहरेदारों और राजकीय अधिकारियों को आदेश दिया, अंदर जाकर हर एक को खत्म कर दो, एक भी बचने ना पाए। तब उन्होंने हर एक का वध कर डाला। पहरेदारों और अधिकारियों ने उन सबके शव बाहर फेंक दिए। तब वे बाल देवता के मंदिर के भीतरी कमरे में गए। वहां से उन्होंने बाल का प्रतिष्ठित खंभा उखाड़ा, उसे बाहर लाकर भस्म कर डाला। उन्होंने बाल के खंभे को पूरी तरह नष्ट कर दिया, साथ ही बाल के मंदिर को भी, जिसे आज तक शौचालय के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। इस प्रकार येहू ने इज़राइल से बाल की उपासना को दूर कर दिया, मगर येहू नेबात के पुत्र यरोबोआम के पापों से दूर ना हुआ। वे पाप जो उसने इज़राइल राष्ट्र को करने के लिए उकसाया था, अर्थात बेथेल और दान में अब भी सोने के बछड़े थे। यहावे ने येहू से कहा, इसलिए कि तुमने वह करके जो मेरी दृष्टि में अच्छा है एक बढ़िया काम किया है, अहाब के वंश के साथ तुमने जो कुछ किया है वही था जो मेरे मन में था। चौथी पीढ़ी तक तुम्हारे पुत्र इज़राइल के राज सिंहासन पर बैठते रहेंगे। मगर येहू पूरे मन से यहावे इज़राइल के परमेश्वर की व्यवस्था और विधियों का पालन करने के विषय में सावधान ना था। वह यरोबोआम के पापों से दूर ना हुआ जो उसने इज़राइल को करने के लिए मजबूर किया था। इन्हीं दिनों यहावे ने इज़राइल राष्ट्र की सीमा को घटाना आरंभ किया। हज़ाएल पूरे इज़राइल राष्ट्र की सीमा में उन्हें हराता रहा। यर्दन के पूर्ववर्ती क्षेत्र से लेकर पूरा गिलाद, गाद और रूबेन के वंशज, मनशशे के वंशज, आर्नोन घाटी के निकटवर्ती अरोवर अर्थात गिलाद और बाशान तक येहू द्वारा किए गए बाकी कामों, उसकी उपलब्धियों और उसके शौर्य का ब्यौरा इज़राइल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में दिया गया है। येहू अपने पूर्वजों के साथ हमेशा के लिए जा मिला। उन्होंने उसे शमरिया में गाड़ा। उसकी जगह पर उसका पुत्र यहोआहाज शासन करने लगा। इज़राइल पर येहू के शासन की पूरी अवधि 28 साल थी। राजाओं की दूसरी पुस्तक अध्याय 11। यहूदिया पर अथालिया का शासन। जब अहज्या की माता को मालूम हुआ कि उसके पुत्र की मृत्यु हो चुकी है, उसने जाकर सारे राज परिवार को नाश कर दिया। मगर राजा यहोराम की पुत्री अहज्या की बहन यहोशीबा वध किए जा रहे राजपुत्रों के बीच से अहज्या के पुत्र योआश को छिपाकर वहां से दूर ले गई और उसे और उसकी धाय को एक शयन कमरे में छिपा दिया। इस प्रकार उन्होंने योआश को अथालिया से बचा लिया और उसका वध नहीं किया जा सका। योआश यहोशीबा की देखरेख में 6 साल रहा। उसे यहावे के भवन में छिपाकर रखा गया था और अथालिया देश पर शासन करती रही। 7वें साल में पुरोहित यहोयादा ने कारी जाति के 1000 सेनापतियों और अंगरक्षकों के प्रधानों को बुलवाया और इन्हें अपने साथ यहावे के भवन में इकट्ठा किया। वहां उसने उनके साथ वाचा बांधी और उन्हें शपथ दिलाई और उन्हें राजपुत्र के दर्शन कराए। तब उसने उन्हें आदेश दिया, तुम्हें यह करना होगा, तुम में से एक तिहाई सैनिक जो शब्बात पर काम के लिए ठहराए गए हैं राजमहल पर पहरा देंगे, दूसरी तिहाई टुकड़ी सूर नामक द्वार पर और तीसरी तिहाई टुकड़ी पहरेदारों के पीछे के द्वार पर बारी बारी से ठहराई गई थी। तुम्हारी 2 टुकड़ियां जो शब्बात पर काम के लिए ठहराई गई है और जो राजा के लिए यहावे के भवन की सुरक्षा के लिए चुनी गई है राजा को घेर कर खड़ी हो जाएंगी। हर एक अपने शस्त्रों को लेकर जो कोई सेना की पंक्ति के पास आएगा निश्चयतः मार डाला जाएगा। तुम्हें हर पल राजा के साथ साथ रहना है, उसके बाहर जाते और भीतर आते समय। शतपति सेना नायकों ने पुरोहित यहोयादा की हर एक बात पूरी की। पुरोहित यहोयादा ने छुट्टी पर जा रहे किसी भी दल को शब्बात सेवा से अवकाश लेने ना दिया और जो सेवा के लिए आ रहे थे वे सभी पुरोहित यहोयादा के सामने इकट्ठा हो गए। पुरोहित ने प्रधानों को वे बर्छियां और ढाले दे दी जो राजा दाविद के शासनकाल से यहावे के भवन में सुरक्षित रखी गई थी। हर एक अंगरक्षक अपने अपने हाथ में अपने हथियार लिए हुए भवन की दक्षिण दिशा से लेकर उत्तरी दिशा तक वेदी के चारों ओर भवन को घेर कर खड़े हो गए। फिर पुरोहित यहोयादा राजकुमार को लेकर बाहर आए, उसके सिर पर मुकुट रखा और उसे साक्षी पत्र दे दिया। तब उन्होंने उसे राजा घोषित कर उसका राज अभिषेक किया और ताली बजाकर सबने जय घोष करते हुए कहा, महाराज जीवित रहे। जब अथालिया ने लोगों और अंगरक्षकों द्वारा किए जा रहे घोषनाद की ध्वनि सुनी, वह यहावे के भवन में जनसमूह के बीच में आ गई। उसने देखा कि राजा खंभे के पास खड़ा हुआ था, रीति के अनुसार सेनापति और तुरी वादक राजा के पास खड़े हुए थे। राज्य के लोग हर्षोल्लास में थे और तुरी फूंक रहे थे। अथालिया ने अपने वस्त्र फाड़े और चिल्ला उठी, देशद्रोह, देशद्रोह। तब पुरोहित यहोयादा ने सेना के शतपति सेना नायकों को आदेश दिया, उसे सेना की पंक्तियों के बीच से निकालकर बाहर लाओ और जो जो उसके पीछे आए उसे तलवार से मार दो। पुरोहित ने आदेश दे रखा था उसकी हत्या यहावे के भवन में ना की जाए, इसलिए उन्होंने उसे पकड़ लिया और जब वह घोड़ों के लिए निर्धारित द्वार से होकर राजघराने तक पहुंची, वहां उसका वध कर दिया गया। यहोयादा ने उस अवसर पर यहावे तथा सारी प्रजा और राजा के बीच यह वाचा स्थापित की कि वे सिर्फ यहावे ही को समर्पित रहेंगे। एक वाचा राजा और प्रजा के बीच भी स्थापित की गई। देश की सारी प्रजा बाल के भवन में गई और उसे पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। उसकी वेदी और उसकी मूर्तियों को उन्होंने चूर चूर कर दिया। तब उन्होंने वेदियों के सामने ही बाल के पुरोहित मत्थान का वध कर दिया। इसके बाद पुरोहित यहोयादा ने यहावे के भवन के लिए पहरेदार बनाए गए। यह सब करने के बाद यहोयादा शतपति सेना नायकों, कारी सैनिकों, अंगरक्षकों और प्रजा को अपने साथ लेकर राजा को यहावे के भवन से बाहर ले आए और वे सब पहरेदारों के द्वार से निकलते हुए राजघराने जा पहुंचे। वहां पहुंचकर राजा योवाश राज सिंहासन पर बैठे। इस पर सारी प्रजा में खुशी छा गई और नगर में शांति भर गई। राजमहल में तलवार से अथालिया की हत्या हुई थी, यह इसका मुख्य कारण था। योवाश 7 साल की थी जब उन्होंने शासन करना शुरू किया। राजाओं की दूसरी पुस्तक अध्याय 12। योवाश द्वारा मंदिर का नवीकरण। येहू के शासनकाल के 7वें साल में योवाश ने शासन शुरू किया। उसने यरूशलेम में 40 साल तक शासन किया। उसकी माता का नाम जीबिया था, वह बेशरबा की थी। योवाश ने आजीवन वही किया जो यहावे की दृष्टि में ठीक है, क्योंकि उसे पुरोहित यहोयादा ने शिक्षा दी थी। फिर भी पूजा स्थलों की वेदियां तोड़ी नहीं गई। लोग पूजा स्थलों की वेदियों पर धूप जलाते और बलि चढ़ाते रहे। योवाश ने पुरोहितों से कहा, यहावे के मंदिर में पवित्र दान के लिए चढ़ाया गया पैसा जो प्रचलित सिक्कों के रूप में है, चाहे वह हर एक व्यक्ति के लिए मूल्यांकित रूप में हो या हर एक व्यक्ति द्वारा स्वैच्छिक रूप में यहावे के भवन में लाई जाती है। पुरोहित इन्हें हर एक खजांची से ले उनसे भवन में जहां कहीं टूटा फूटा दिखाई दे सुधारे। मगर यह पाया गया कि राजा योवाश के शासन के 23वें साल तक पुरोहितों ने भवन में मरम्मत का कोई भी काम नहीं किया था। तब राजा योवाश ने पुरोहित यहोयादा और अन्य पुरोहितों को बुलाकर उनसे पूछा, आप लोग यहावे के भवन की मरम्मत का काम क्यों नहीं करवा रहे? इसलिए अब अपने जान पहचान वाले खजांची से पैसे अपने लिए लेना बंद कर दे तो वह धनराशि मरम्मत के काम में लगाई जाए। पुरोहित इस पर सहमत हो गए कि वे अब ना लोगों से मुद्राओं का दान इकट्ठा करेंगे और ना ही यहावे के भवन की मरम्मत की जवाबदारी लेंगे। मगर पुरोहित यहोयादा ने एक मंजूषा लेकर उसके ढक्कन में एक छेद करके यहावे के भवन के फाटक के दाईं ओर वेदी के पास रख दी। वे पुरोहित जो डेवड़ी पर दृष्टि रखते थे यहावे के भवन में आई सारी मुद्राओं को इसी मंजूषा में डालने लगे। जब वे देखते थे मंजूषा में बहुत चांदी मुद्राएं इकट्ठा हो चुकी है, राजा की ओर से चुने गए लिपिक और महापुरोहित आकर वह राशि थैलों में भरते और यहावे के भवन में आई मुद्राओं की गिनती कर लेते थे। मुद्राओं की गिनती के बाद उन्हें तोला जाता था और यह उन शिल्पियों को दे दी जाती थी जो वस्तुते यहावे के भवन के अधिकारी थे। यही यहावे के भवन के सुधार का काम कर रहे बढ़ई और राजमिस्त्रियों को भुगतान किया करते थे। यह राजमिस्त्रियों और कारीगरों की मजदूरी, लकड़ी और सवारी हुई शिलाओं का और यहावे के भवन की मरम्मत के लिए आवश्यक राशि का भुगतान किया करते थे। मगर इस प्रकार आए धन से यहावे के भवन में प्रयोग के लिए आवश्यक चांदी की चिलमचियां, चिमटियां, कटोरे, तुरियां या कोई भी सोने का बर्तन या चांदी का बर्तन यहावे के भवन में लाई गई राशि से नहीं बनवाए गए, क्योंकि इस राशि से उन कर्मचारियों की मजदूरी दी जाती थी जो यहावे के भवन की मरम्मत का काम कर रहे थे। इसके अलावा वे उन व्यक्तियों से जिन्हें वे कर्मचारियों को देने के लिए मुद्राएं सौंपा करते थे कोई भी लेखा जोखा नहीं लिया करते थे, क्योंकि वे सभी सच्चे थे। दोष बलि और पाप बलि से मिली मुद्राओं को यहावे के भवन में नहीं लाया जाता था। यह राशि पुरोहितों को दिए जाने के लिए ठहरा दी गई थी। इसी समय आराम के राजा हजाएल ने गात पर हमला कर उसे अपने अधीन कर लिया। मगर जब हजाएल यरूशलेम पर हमला करने के लिए निकला, यहूदिया के राजा योवाश ने अपने पूर्वजों यहोशाफात, यहोराम और अहज्या द्वारा चढ़ाई गई पवित्र वस्तुएं, जिन्हें यहूदिया के राजाओं ने भेंट किया था, और स्वयं अपने द्वारा भेंट की हुई पवित्र वस्तुएं और राजकोष में रखा सारा सोना लेकर, जो यहावे के भवन में रखा था, आराम के राजा हजाएल को भेंट में दे दिया। फलस्वरूप हजाएल यरूशलेम न जाकर अपने देश लौट गया। योआश की उपलब्धियों और उसके द्वारा किए गए कामों का ब्यौरा यहूदिया के राजाओं की इतिहास की पुस्तक में दिया गया है। योआश के सेवकों ने उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचा और मिल्लो भवन में उसकी हत्या कर दी। यह भवन सिल्ला नगर के मार्ग के ढाल पर बना है। शिमियत का पुत्र येजाकर और शोमर के पुत्र योजाबाद ने, जो उसके ही सेवक थे, उस पर वार किया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। उन्होंने उसे उसके पूर्वजों के साथ दाविद के नगर में गाड़ दिया। उसकी जगह पर उसका पुत्र अमाज्या शासन करने लगा। राजाओं की दूसरी पुस्तक अध्याय 13। इज़राइल पर यहोआहाज का शासन। अहज्या के पुत्र यहूदिया के राजा योआश के शासनकाल के 23वें साल में येहू के पुत्र यहोआहाज ने शमरिया में इज़राइल पर शासन करना शुरू किया। उसने 17 साल शासन किया। उसने वह किया जो यहावे की दृष्टि में गलत है, और उसने नेबात के पुत्र यरोबोअम के पापों का अनुसरण किया, जिन्हें करने के लिए उसने इज़राइल राष्ट्र को भी उकसाया। वह इन पापों से दूर ना हुआ। फलस्वरूप यहावे का क्रोध इज़राइल राष्ट्र पर भड़क गया, और यहावे उन्हें बार बार आराम के राजा हजायल के और उसके पुत्र बेन हदद के अधीन करते रहे। इसलिए यहोआहाज ने यहावे से प्रार्थना की, और यहावे ने उसकी विनती पर ध्यान दिया, क्योंकि उन्होंने इज़राइली प्रजा पर हो रहे अत्याचार को देखा कि आराम का राजा उन्हें कैसे सता रहा था। यहावे ने इज़राइल राष्ट्र को एक छुड़ाने वाला दिया। फलस्वरूप इज़राइली प्रजा आराम देश के अधिकार से मुक्त हो गई, और वे अपने ही तंबुओं में पहले के समान रहने लगे। इतना सब होने पर भी वे यरोबोआम के वंश द्वारा किए जाने वाले पापों से दूर ना हुए। वे पाप जिन्हें करने के लिए उसने इज़राइल को उकसाया था, वे इन पापों में उसका अनुसरण करते रहे। अशेरा देवी की मूर्ति शमरिया नगर में बनी ही रही। अब यहोआहाज की सेना में 50 घुड़सवारों और 10 रथों और 10,000 पैदल सैनिकों से ज्यादा बाकी नहीं रह गए, क्योंकि आराम के राजा ने उन्हें नाश कर रोंदते हुए धूल के समान बना दिया था। यहोआहाज की उपलब्धियों, उसके द्वारा किए गए बाकी कामों और उसके शौर्य का ब्यौरा इज़राइल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में दिया गया है। यहोआहाज हमेशा के लिए अपने पूर्वजों में जा मिला। उन्होंने उसे शमरिया में गाड़ दिया, उसकी जगह पर उसके पुत्र योआश ने शासन करना शुरू किया। इज़राइल पर यहोआश का शासन। यहूदिया के राजा योआश के शासन के 37वें साल में यहोआहाज का पुत्र यहोआश शमरिया में इज़राइल पर शासन करने लगा और उसने 16 साल शासन किया। उसने वही किया जो यहावे की दृष्टि में गलत था। वह उन पाप कामों से दूर ना हुआ, वह उन्हीं पापों का अनुसरण करता रहा जिन्हें नेबात के पुत्र यरोबोअम ने इज़राइल को करने के लिए उकसाया था। यहोआश के बाकी कामों का, उसकी सारी उपलब्धियों का, उसकी वीरता का, यहूदिया के राजा अमाज़िया से उसके युद्ध, इन सभी का ब्यौरा इज़राइल के राजाओं की इतिहास की पुस्तक में दिया गया है। यहोआश हमेशा के लिए अपने पूर्वजों में जा मिला और यरोबोअम उसके सिंहासन पर बैठा। यहोआश शमरिया में इज़राइल के राजाओं के साथ गाड़ा गया। इस समय एलीशा ऐसे बीमार पड़े कि वे मरने पर थे। इज़राइल का राजा यहोआश उनसे भेंट करने गया। वह उनके सामने जाकर रोते हुए कहने लगा, मेरे पिता और इज़राइल के रथों और उसके घुड़सवारों। एलीशा ने उसे कहा, एक धनुष लो और बाण भी। राजा ने वैसा ही किया। तब एलीशा ने इज़राइल के राजा को आदेश दिया, धनुष पर अपना हाथ रखो। उसने धनुष पर अपना हाथ रखा। तब एलीशा ने अपना हाथ राजा के हाथ के ऊपर रख दिया। तब एलीशा ने आदेश दिया, पूर्व की ओर की खिड़की खोल दो। उसने वह खिड़की खोल दी। तब एलीशा ने आदेश दिया, बाण छोड़ो। उसने बाण छोड़ा। एलीशा ने कहा, यहावे का विजय बाण, हाँ आराम देश पर जय का बाण। तुम अफेक में आरामियों से तब तक युद्ध करोगे जब तक तुम उन्हें खत्म ना कर दो। एलीशा ने दोबारा कहा, बाण उठाओ। उसने बाण उठाए। तब एलीशा ने इज़राइल के राजा को आदेश दिया, भूमि को निशाना बनाकर वार करो। राजा ने भूमि पर 3 वार किए और रुक गया। इस पर परमेश्वर के जन ने उस पर गुस्सा करते हुए कहा, तुम्हें 5 या 6 वार तो करने थे, तभी तुम आराम को ऐसा मारते कि उनका अंत होकर ही रहता। अब तो तुम आराम को सिर्फ 3 बार ही हरा सकोगे। एलीशा की मृत्यु हो गई और उन्होंने उन्हें गाड़ दिया। हर साल वसंत ऋतु में मोआबी लुटेरों का एक दल उस क्षेत्र पर हमला किया करता था। एक अवसर पर जब किसी व्यक्ति की देह को गाड़ा जा रहा था, लोगों ने लुटेरों के दल को आते देखा। उस व्यक्ति की देह को जल्दी ही एलीशा की कब्र में फेंक दिया। जैसे ही शव ने एलीशा की अस्थियों से छुआ, वह व्यक्ति जीवित हो अपने पैरों पर खड़ा हो गया। यहोआहाज के पूरे शासनकाल में आराम का राजा हजाइल इज़राइल को सताता ही रहा, मगर यहावे उन पर कृपालु थे, उन पर उनकी करुणा बनी थी। अब्राहम, इत्साहक और याकोब से अपनी वाचा के कारण यहावे उनकी ओर हुए। उन्होंने उन्हें खत्म ना होने दिया और ना ही उन्हें अब तक अपने सामने से दूर ही किया। आराम के राजा हजाइल की मृत्यु के बाद उसका पुत्र बेन हदद उसकी जगह पर शासन करने लगा। इस समय यहोआहाज के पुत्र यहोआश ने हजाइल के पुत्र बेन हदद से वे सारे नगर वापस ले लिए जो उसने युद्ध में उसके पिता यहोआहाज से छीन लिए थे। यहोआश ने उसे 3 बार हराया और ये इज़राइली नगर वापस ले लिए। राजाओं की दूसरी पुस्तक अध्याय 14। यहूदिया पर अमाज़िया का शासन। यहोआहाज के पुत्र यहोआश के शासन के 2 साल में यहूदिया के राजा योआश का पुत्र अमाज़िया ने शासन करना शुरू किया। जब उसने शासन की बागडोर संभाली, उसकी उम्र 25 साल थी। उसने यरूशलेम में 29 साल शासन किया। उसकी माता का नाम यहोआदीन था। वह यरूशलेम वासी थी। उसने वही किया जो यहावे की दृष्टि में सही था, फिर भी अपने पूर्वज दाविद के समान नहीं। उसने हर एक काम में अपने पिता योआश का अनुसरण किया, फिर भी पूजा स्थलों की वेदियां तोड़ी नहीं गई थी। लोग पूजा स्थलों की वेदियों पर धूप जलाते और बलि चढ़ाते रहे। उसके हाथों में राज्य मजबूत होते ही उसने अपने सेवकों की हत्या कर डाली जिन्होंने उसके पिता की हत्या की थी, मगर उसने इन हत्यारे सेवकों की संतान का वध नहीं किया। ठीक जैसा यहावे की आज्ञा के अनुसार मोशे द्वारा दी गई व्यवस्था में दिया है, पुत्र के पाप का दंड उसके पिता को ना मिले और ना पिता के कारण पुत्र मार डाला जाए, जिसने पाप किया हो वही उस पाप के कारण मार डाला जाए। उसने नमक की घाटी में 10,000 एदोमियों को मार गिराया। भयंकर युद्ध के द्वारा उसने सेला नगर अपना लिया और उसे एक नया नाम दिया, योकथैल, जो आज तक प्रचलित है। तब अमाज्या ने येहू के पोते और यहोआहाज के पुत्र इज़राइल का राजा यहोआश को दूतों द्वारा यह संदेश भेजा, चलो हम युद्ध भूमि में आपस में बल परीक्षण करें। इज़राइल के राजा यहोआश ने यहूदिया के राजा अमाज्या को उत्तर भेजा, लबानोन की एक कटीली झाड़ी ने लबानोन के केदार को यह संदेश भेजा, अपनी पुत्री को मेरे पुत्र की पत्नी होने के लिए दे दो। तब एक जंगली पशु वहां से निकलते हुए कटीली झाड़ी को कुचलते हुए निकल गया। यह सच है कि तुमने एदोम को हराया है और तुम्हारा मन गर्व से ऊंचा हो रहा है। अपने ही पराक्रम में संतुष्ट बने रहो, ऐसा करो घर में शांति से बैठे रहो। मुसीबत को क्यों बुला रहे हो? तुम्हारा पतन तो होना ही है, साथ ही सारी यहूदिया राज्य का भी। मगर अमाज्या ने उसकी एक न सुनी। तब इज़राइल के राजा यहोआश ने हमला कर दिया। दोनों का सामना यहूदिया के बेत शेमेश नामक स्थान पर हुआ। इज़राइल ने यहूदिया को हरा दिया, सैनिक पीठ दिखाकर अपने अपने तंबुओं को लौट गए। इज़राइल के राजा यहोआश ने अमाज्या को, जो अहज्या का पोते और यहूदिया के राजा योआश के पुत्र था, बेत शेमेश नामक स्थान पर बंदी बना लिया और उसे लेकर वह यरूशलेम आ गया। वहां उसने एफ्राइम के फाटक से लेकर कोने के द्वार तक लगभग 180 मीटर शहरपना को गिरा दिया। वहां उसे यहावे के भवन और राजभंडार में से जितना सोना चांदी और सारे बर्तन मिले, उन्हें और बंधकों को लेकर वह शमरिया को लौट गया। यहोआश द्वारा किए गए बाकी काम, उसकी वीरता और यहूदिया के राजा अमाज्या के साथ उसके युद्ध का ब्यौरा इज़राइल के राजाओं की इतिहास की पुस्तक में दिया गया है। यहोआश हमेशा के लिए अपने पूर्वजों में जा मिला और उसे शमरिया में इज़राइल के राजाओं के साथ गाड़ दिया। उसके पुत्र यरोबोआम ने उसके स्थान पर शासन किया। यहूदिया के राजा योआश का पुत्र अमाज्या इज़राइल के राजा यहोआहाज के पुत्र यहोआश की मृत्यु के बाद 15 साल जीवित रहा। अमाज्या के बाकी के कामों का ब्यौरा यहूदिया के राजाओं की इतिहास की पुस्तक में दिया गया है। यरूशलेम में लोगों ने उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचा। तब वह लाकीश को भाग गया, किंतु उन्होंने लाकीश में जाकर उसकी खोज की और वहीं उसकी हत्या कर दी। उन्होंने घोड़ों पर उसका शव यरूशलेम लाकर उसके पूर्वजों के साथ दाविद के नगर में गाड़ दिया। यहूदिया की प्रजा ने अज़रिया को उसके पिता अमाज्या के स्थान पर राजा अभिषिक्त किया। उस समय उसकी उम्र 16 साल ही थी। राजा की मृत्यु के बाद उसने एलात नगर को दोबारा बसाया और उसे यहूदिया में शामिल कर लिया। इज़राइल पर यरोबोआम द्वितीय का शासन। यहूदिया के राजा योआश के पुत्र अमाज्या के शासनकाल के 15वें साल में इज़राइल के राजा यहोआश के पुत्र यरोबोआम को शमरिया में राजा बनाया गया। उसका शासनकाल 41 साल का था। उसने वह किया जो यहावे की दृष्टि में गलत था। वह उन पापों से दूर ना हुआ जो नेबात के पुत्र यरोबोआम ने इज़राइल को करने के लिए उकसाया था। उसने इज़राइल राष्ट्र की सीमा लबो हामात से लेकर अराबा सागर तक दोबारा स्थापित कर दी। यह यहावे इज़राइल के परमेश्वर के उस आदेश के अनुसार था जो उन्होंने गात हेफेर वासी अमिथाई के पुत्र भविष्यद्वक्ता योना के द्वारा दिया था। यहावे देख रहे थे कि इज़राइल पर हो रहा अत्याचार बहुत असहनीय था। इससे किसी को छूट नहीं थी, चाहे दास या स्वतंत्र, और इसके लिए इज़राइल का सहायक कोई भी ना था। यहावे ने यह कभी नहीं कहा कि वह पृथ्वी पर से इज़राइल का नाम ही मिटा देंगे। तब यहावे ने यहोआश के पुत्र यरोबोअम के द्वारा उन्हें छुटकारा दिलाया। यरोबोअम द्वारा किए गए बाकी कामों और उसकी उपलब्धियों का ब्यौरा, उसकी वीरता, उसकी युद्ध नीति, दमिश्क और हामात को यहूदिया से इज़राइल के लिए दोबारा पाने का ब्यौरा इज़राइल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में दिया गया है। यरोबोआम हमेशा के लिए अपने पूर्वजों इज़राइल के राजाओं में जा मिला और उसका पुत्र जकरिया उसके स्थान पर शासन करने लगा। राजाओं की दूसरी पुस्तक अध्याय 15। यहूदिया पर अज़रिया का शासन। इज़राइल के राजा यरोबोआम के शासन के 27वें साल में अमाज़िया के पुत्र अज़रिया ने यहूदिया पर शासन करना शुरू किया। उस समय उसकी उम्र 16 साल थी। यरूशलेम में उसने 52 साल शासन किया। उसकी माता का नाम यखोलिया था, वह यरूशलेम वासी थी। अज़रिया ने अपने पिता अमाज़िया समान वही किया जो यहावे की दृष्टि में सही है। फिर भी पूजा स्थलों की वेदियां तोड़ी नहीं गई थी। लोग पूजा स्थलों की वेदियों पर धूप जलाते और बलि चढ़ाते रहे। यहावे ने राजा की देह पर वार किया, फलस्वरूप वह मरने तक कुष्ठ रोगी होकर एक अलग घर में रहता रहा। तब राजपुत्र योथाम प्रजा पर शासन करने लगा। अज़रिया द्वारा किए गए अन्य काम और उसकी उपलब्धियों का ब्यौरा यहूदिया के राजाओं की इतिहास की पुस्तक में दिया गया है। अज़रिया हमेशा के लिए अपने पूर्वजों में जा मिला और उन्होंने उसे उसके पूर्वजों के साथ दाविद के नगर में गाड़ दिया। उसकी जगह पर उसका पुत्र योथाम शासन करने लगा। इज़राइल पर जकरिया का शासन। यहूदिया के राजा अज़रिया के शासन के 38वें साल में यरोबोआम के पुत्र जकरिया ने शमरिया में इज़राइल पर शासन करना शुरू किया। उसने सिर्फ 6 महीने ही शासन किया। उसने वही किया जो यहावे की दृष्टि में गलत था, ठीक जैसा उसके पूर्वजों ने किया था। वह उन पापों से दूर ना हुआ जो नेबात के पुत्र यरोबोआम ने शुरू किए और जिन्हें करने के लिए उसने इज़राइल को उकसाया था। याबेश के पुत्र शल्लूम ने उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचा और उसकी प्रजा के सामने ही उस पर घात कर उसकी हत्या कर दी और उसके स्थान पर खुद राजा बन गया। जकरिया के अन्य कामों का ब्यौरा इज़राइल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में दिया गया है। यहावे ने येहू से यह प्रतिज्ञा की थी, 4 पीढ़ी तक तुम्हारी संतान इज़राइल के सिंहासन पर बैठेगी। यह इसी प्रतिज्ञा की पूर्ति है। इज़राइल पर शल्लूम का शासन। यहूदिया के राजा उज़िया के शासनकाल के 39वें साल में याबेश के पुत्र शल्लूम ने शासन करना शुरू किया और उसने शमरिया में 1 महीने तक शासन किया। उसी समय गादी का पुत्र मेनाखेम तिर्जा से शमरिया आ गया और उसने याबेश के पुत्र शल्लूम पर घात कर उसकी हत्या करके उसकी जगह पर स्वयं राजा बन गया। शल्लूम के बाकी काम और उसके द्वारा रचे गए षड्यंत्र का ब्यौरा इज़राइल के राजाओं की इतिहास की पुस्तक में दिया गया है। इसके बाद मेनाखेम ने तिफ्सा नगर पर हमला किया और सारी नगरवासियों को और तिर्जा से लेकर सारी सीमावर्ती क्षेत्र को खत्म कर दिया। क्योंकि उन्होंने फाटक खोलने से मना कर दिया था, इसलिए उसने इसे पूरी तरह नाश कर दिया और सभी गर्भवती स्त्रियों के पेट चीर डाले। इज़राइल पर मेनाखेम का शासन। यहूदिया के राजा अज़रिया के शासन के 39वें साल में गादी के पुत्र मेनाखेम ने इज़राइल पर शासन करना शुरू किया। उसने शमरिया में 10 साल शासन किया। उसने वही किया जो यहावे की दृष्टि में गलत था। वह जीवन भर उन पापों से दूर ना हुआ जो नेबात के पुत्र यरोबोआम ने इज़राइल को करने के लिए उकसाया था। अश्शूर के राजा पूल ने राज्य पर हमला किया। मेनाखेम ने उसे लगभग 35 टन चांदी इस मनशा से भेंट में दे दी। कि वह उससे अपनी सत्ता को दृढ़ करने में सहायता ले सके। मेनाखेम ने इसराइल के सारे धनी व्यक्तियों पर प्रति व्यक्ति लगभग आधा किलो चांदी का कर लगा दिया कि अश्शूर के राजा को यह भेंट में दी जा सके। तब अश्शूर का राजा वहां से लौट गया, वह उस देश में और अधिक नहीं ठहरा। मेनाखेम के अन्य कामों और उसकी उपलब्धियों का ब्यौरा इसराइल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में दिया गया है। मेनाखेम हमेशा के लिए अपने पूर्वजों में जा मिला और उसके स्थान पर उसका पुत्र पेकाहिया शासन करने लगा। इसराइल पर पेकाहिया का शासन। यहूदिया के राजा अज़रिया के शासन के 50वें साल में मेनाखेम के पुत्र पेकाहिया ने शमरिया में इसराइल पर शासन प्रारंभ किया। उसका शासनकाल 2 साल का था। उसने वह किया जो यहावे की दृष्टि में गलत था। वह उन पापों से विमुख ना हुआ जिन्हें करने के लिए नेबात के पुत्र यरोबोअम ने इसराइल को उकसाया था। उसके सेना नायक पेखा रेमालिया के पुत्र ने गिलाद के 50 व्यक्तियों के साथ मिलकर उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचा और शमरिया में राजमहल के गढ़ में अर्गोप और अरिया के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी और स्वयं उसके स्थान पर राजा बन गया। पेकाहिया द्वारा किए गए अन्य कार्य और उसकी सारी उपलब्धियों का ब्यौरा इसराइल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में दिया गया है। इसराइल पर पेखा का शासन। यहूदिया के राजा अज़रिया के शासन के 52वें साल में रेमालिया के पुत्र पेखा ने शमरिया में शासन करना शुरू किया। उसने 20 साल शासन किया। उसने वह किया जो यहावे की दृष्टि में गलत था। वह उन पापों से दूर ना हुआ जो नेबात के पुत्र यरोबोअम ने इसराइल को करने के लिए उकसाया था। इसराइल के राजा पेखा के शासनकाल में अश्शूर के राजा तिगलत पलेसर ने हमला किया और इयोन बेतमाका के आबेल यानोहा केदेश आजोर गिलाद गलील और नफ्ताली का सारा इलाका अपने अधीन कर लिया। इन सभी को बंदी बनाकर वह अश्शूर ले गया। उसी समय एला के पुत्र होशिया ने पेखा के विरुद्ध षड्यंत्र रचा, उस पर वार किया और उसकी हत्या कर दी और उसके स्थान पर राजा बन गया। यह घटना उज्जिया के पुत्र योथाम के शासन के 20वें साल में हुई। पेखा द्वारा किए गए अन्य कार्य और उसकी सारी उपलब्धियों का ब्यौरा इसराइल के राजाओं की इतिहास की पुस्तक में दिया गया है। यहूदिया में योथाम का शासन। इसराइल के राजा रेमालिया के पुत्र पेखा के शासनकाल के 2 साल में उज्जिया के पुत्र योथाम ने यहूदिया पर शासन शुरू किया। शासन शुरू करते समय उसकी उम्र 25 साल थी। उसने यरूशलेम में 16 साल शासन किया। उसकी माता का नाम यरूशा था। वह सादोक की पुत्री थी। योथाम ने वह किया जो यहावे की दृष्टि में सही था। उसने वही सब किया जो उसके पिता उज्जिया ने किया था। फिर भी पूजा स्थलों की वेदियां तोड़ी नहीं गई थी। लोग पूजा स्थलों की वेदियों पर धूप जलाते और बलि चढ़ाते रहे। योथाम ने यहावे के भवन के ऊपरी द्वार को बनवाया। योथाम द्वारा किए गए अन्य कार्य और उसकी अन्य उपलब्धियों का ब्यौरा यहूदिया के राजाओं की इतिहास की पुस्तक में दिया गया है। इन्हीं दिनों में यहावे ने यहूदिया के विरुद्ध अराम देश के राजा रेजीन और रेमालिया के पुत्र पेखा को हमले के उद्देश्य से भेजना शुरू कर दिया था। योथाम हमेशा के लिए अपने पूर्वजों में जा मिला और उसे उसके पूर्वजों के साथ दाविद के नगर में गाड़ दिया गया। उसके स्थान पर उसका पुत्र आहाज राजा बना। राजाओं की दूसरी पुस्तक अध्याय 16। यहूदिया पर आहाज का शासन। रेमालिया के पुत्र पेखा के शासन के 17वें साल में योथाम का पुत्र आहाज यहूदिया का राजा बना। शासन शुरू करते समय आहाज की उम्र 20 साल थी। यरूशलेम में उसने 16 साल शासन किया। उसने वह नहीं किया जो यहावे उसके परमेश्वर की दृष्टि में सही था। जैसा उसके पूर्वज दाविद ने किया था। इसकी बजाय उसका आचरण इज़राइल के राजाओं की नीतियों के अनुसार था, यहाँ तक कि उसने अपने ही पुत्र को होम बलि के रूप में बलि कर दिया। यह उन जनताओं की घृणित प्रथाओं के अनुसार था जिन्हें यहावे ने इज़राइल राष्ट्र के सामने से निकाल दिया था। वह पूजा स्थलों पर, पहाड़ियों पर और हरेक हरे वृक्ष के नीचे धूप जलाकर बलि चढ़ाता रहा। तब आराम का राजा रेजीन और इज़राइल के राजा रेमालिया का पुत्र पेखा यरूशलेम पर युद्ध करने के उद्देश्य से वहां आ गए। उन्होंने आहाज को बंदी बना लिया, किंतु वे उसे अपने वश में ना कर सके। उसी समय आराम के राजा रेजीन ने एलात नगर को अधीन कर आराम देश में शामिल कर लिया। यह करके उसने हरेक यहूदियावासी को वहां से पूरी तरह निकाल दिया और एलात में एदोमी आकर बस गए और आज भी वहीं रह रहे हैं। आहाज ने अशूर के राजा तिगलत पलेसर को दूतों द्वारा यह संदेश भेजा, मैं आपका सेवक बल्कि आपका पुत्र हूँ, कृपया आकर आराम के राजा और इज़राइल के राजा से मेरी रक्षा कीजिए, ये मुझ पर हमला करने को उतारू हैं। आहाज को यहावे के भवन में और राजघराने के खजाने में जितना भी सोना और चांदी मिली वह सब उसने अशूर के राजा को उपहार के रूप में भेज दिया। अशूर के राजा ने आहाज का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। तब वह दमिश्क पर हमला कर उसे अपने अधीन करके नगरवासियों को बंदी बनाकर उन्हें कीर नामक स्थान को ले गया और वहां उसने रेजीन की हत्या कर दी। यह सब होने के बाद राजा आहाज अशूर के राजा तिगलत पलेसेर से मिलने दमिश्क गया। उसने वहां वह वेदी देखी जो दमिश्क में स्थापित की गई थी। राजा आहाज ने वेदी की बनावट का नक्शा पुरोहित उरिया को भेज दिया। इसमें वेदी को बनाने के सारे शिल्प कौशल का ब्यौरा था। इसके आधार पर पुरोहित उरिया ने एक वेदी बनाई ठीक उसी के अनुसार जैसा राजा आहाज ने दमिश्क से भेजा था। पुरोहित उरिया ने राजा आहाज के दमिश्क से लौटने के पहले ही यह वेदी तैयार कर ली थी। जब राजा दमिश्क से लौटा उसने वह वेदी देखी, राजा वेदी के पास गया, वहां राजा ने होमबलि और अनबलि चढ़ाई, राजा ने वहां अर्घ उंडेला और अपनी मेल बलि का लहू उस वेदी पर छिड़क दिया। यहावे के सामने रखी कांसे की वेदी को उसने भवन के सामने की ओर से उसकी अपनी वेदी और यहावे के भवन के बीच से हटाकर उसने अपनी वेदी की उत्तरी दिशा में स्थापित करवा दिया। तब राजा आहाज ने पुरोहित उरिया को आदेश दिया, इस नई विशाल वेदी पर आप भोर की होमबलि, शाम की अनबलि, राजा के लिए होमबलि और अनबलि, और सारी प्रजा के लिए होमबलि और अनबलि और उनका अर्घ इस वेदी पर ही चढ़ाना तथा होमबलि और बलि का सारा लहू इसी वेदी पर छिड़कना, मगर यह कांसे की वेदी सिर्फ मेरे ही इस्तेमाल के लिए रहेगी कि मैं इसके द्वारा परमेश्वर की इच्छा जान सकूं। पुरोहित उरिया ने राजा आहाज के आदेश के अनुसार ही किया। राजा आहाज ने ठेलों की चौखटों को काटकर उसमें से चिलमची को निकाल लिया और कांसे के बैलों के ऊपर रखे हुए पानी के बर्तन को उतारकर पत्थर के एक चबूतरे पर स्थापित कर दिया। उसने यहावे के भवन परिसर में शब्बात पर इस्तेमाल किए जा रहे ओसारे को और राजा के लिए बनाए गए बाहरी फाटक को अशूर के राजा के कारण यहावे के भवन से हटा दिया। आहाज के अन्य कामों का और उसकी अन्य उपलब्धियों का ब्यौरा यहूदिया के राजाओं की इतिहास की पुस्तक में दिया गया है। आहाज हमेशा के लिए अपने पूर्वजों में जा मिला और उसे उसके पूर्वजों के बीच दाविद के नगर में गाड़ दिया। उसकी जगह पर उसका पुत्र हिजकिया शासन करने लगा। राजाओं की दूसरी पुस्तक अध्याय 17। इज़राइल पर होशिया का शासन। यहूदिया के राजा आहाज के शासन के 12वें साल में एला का पुत्र होशिया शमरिया में राजा बना। उसका शासन 9 साल का था। उसने वह किया जो यहावे की दृष्टि में गलत था, मगर उस सीमा तक नहीं जैसा इसराइल में उसके पहले के राजाओं ने किया था। अश्शूर के राजा शालमानेसर ने उस पर हमला कर दिया। होशिया को उसके अधीन जागीरदार होकर उसे कर देना पड़ता था, मगर अश्शूर के राजा को होशिया के एक षड्यंत्र के विषय में मालूम हो गया। होशिया ने मिस्र देश के राजा सो से संपर्क के लिए अपने दूत भेजे थे और उसने अपने ठहराए गए कर का भुगतान भी नहीं किया था, जैसा वह हर साल किया करता था। तब अश्शूर के राजा ने उसे बंदी बनाकर बंदी गृह में डाल दिया। इसके बाद उसने सारी इसराइल देश पर कब्जा किया और 3 साल तक शमरिया नगर को अपनी अधीनता में रखा। होशिया के शासन के 9वें साल में अश्शूर के राजा ने शमरिया को अपने अधिकार में ले लिया। उसने इसराइल जनता को बंदी बनाकर अश्शूर ले जाकर वहां हाला और हाबोर क्षेत्र में बसा दिया। ये दोनों क्षेत्र मेदिया प्रदेश के गोजान नदी के तट पर स्थित है। इसराइल के पतन का कारण। यह सब इसलिए हुआ कि इसराइल वंशजों ने यहावे अपने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया, उस परमेश्वर के विरुद्ध जिन्होंने उन्हें मिस्र के राजा फरो की बंधुआई से मुक्त कराया था। उनमें पराए देवताओं के लिए भय आ गया था। वे उन राष्ट्रों की प्रथाओं का पालन करने लगे थे जिन जनताओं को यहावे ने इसराइल वंश के सामने से अलग कर दिया था। इसके अलावा वे इसराइल के राजाओं द्वारा प्रचलित प्रथाओं का पालन करने लगे थे। इसराइल के लोग यहावे उनके परमेश्वर के विरुद्ध गुप्त रूप से वह सब करते रहे जो गलत था। उन्होंने अपने सारे नगरों में पहरेदारों के खंभों से लेकर गढ़ नगर तक पूजा की जगहों को बनवाया। उन्होंने हर एक ऊंची पहाड़ी पर और हर एक हरे पेड़ के नीचे अशेरा के खंभे खड़े किए। वे सारे पूजा स्थलों पर धूप जलाते थे उन्हीं जनताओं के समान जिन्हें यहावे ने उनके सामने से हटाकर अलग किया था। इसराइली प्रजा दुष्टता से भरे कामों में लगी रही जिससे यहावे का गुस्सा भड़क उठता था। वे मूर्तियों की सेवा उपासना करते रहे जिनके विषय में यहावे ने उन्हें चेताया था, तुम यह ना करना। फिर भी यहावे इसराइल और यहूदिया को हर एक भविष्यद्वक्ता और दर्शी के द्वारा इस प्रकार चेतावनी देते रहे, व्यवस्था के अनुसार अपनी बुराइयों से फिरकर मेरे आदेशों और नियमों का पालन करो जिनका आदेश मैंने तुम्हारे पूर्वजों को दिया था और जिन्हें मैंने भविष्यवक्ताओं मेरे सेवकों के माध्यम से तुम तक पहुंचाया, मगर उन्होंने इसकी अवहेलना की और अपने हृदय कठोर कर लिए जैसा उनके पूर्वजों ने किया था जिनकी यहावे उनके परमेश्वर में कोई श्रद्धा ना थी। उन्होंने यहावे के नियमों का तिरस्कार किया और उस वाचा को तुच्छ माना जो यहावे ने उनके पूर्वजों के साथ स्थापित की थी। उन्होंने उन चेतावनियों पर ध्यान ना दिया जिनके द्वारा यहावे ने उन्हें सचेत करना चाहा था। वे बेकार के कामों का अनुसरण करते करते खुद भी बेकार बन गए और अपने पड़ोसी राष्ट्रों के समान हो गए। इन्हीं राष्ट्रों के बारे में यहावे ने उन्हें साफ आदेश दिया था उनका अनुसरण नहीं करना। उन्होंने यहावे अपने परमेश्वर के सभी आदेशों को त्याग दिया और उन्होंने अपने लिए बछड़ों की धातु की मूर्तियां, हां 2 बछड़ों की मूर्तियां ढाल ली। उन्होंने अशेरा को बनाया और आकाश की सारी शक्तियों और बाल देवता की उपासना की। इसके बाद उन्होंने अपनी संतान को आग के बीच से होकर निकलने की प्रथा पूरी करने के लिए मजबूर किया। वे भावी कहते थे और जादू टोना भी करते थे। उन्होंने स्वयं को वह सब करने के लिए समर्पित कर दिया जो यहावे की दृष्टि में गलत है। इससे उन्होंने यहावे के क्रोध को भड़का दिया। फलस्वरूप यहावे इसराइल पर बहुत ही क्रोधित हो गए और उन्होंने इसराइल को अपनी नजरों से दूर कर दिया सिवाय यहूदा गोत्र के। यहूदिया ने भी यहावे अपने परमेश्वर के आदेशों का पालन नहीं किया। उसने उन्हीं प्रथाओं का अनुसरण किया जिनको इसराइल द्वारा शुरू किया गया था। यहावे ने इसराइल के सारे वंशजों को त्याग दिया, उन्हें सताया, उन्हें लुटेरों को सौंप दिया और अपनी दृष्टि से दूर कर दिया। जब यहावे इसराइल को दाविद के वंश से अलग कर चुके इसराइलियों ने नेबात के पुत्र यरोबोआम को राजा बनाकर प्रतिष्ठित किया। यरोबोआम ने इसराइल से यहावे का अनुसरण खत्म करवा दिया और इसराइल को अधम पाप के लिए उकसाया। इसराइली प्रजा ने वे सारे पाप किए जो यरोबोआम ने स्वयं किए थे। इन पापों से वे कभी दूर ना हुए, तब यहावे ने उन्हें अपनी दृष्टि से दूर कर दिया, जैसा उन्होंने भविष्यवक्ताओं अपने सेवकों के द्वारा पहले ही घोषित कर दिया था। तब इसराइल वंशज अपने देश से अश्शूर को बंधुआई में भेज दिए गए, वे अब तक बंधुआई में ही है। इसराइल के नगरों में विदेशियों का बसाया जाना। अश्शूर के राजा ने बाबेल, कूथा, अव्वा, हामात और सेफरवाइम से लोगों को लाकर शमरिया के नगरों में बसा दिया, जहां इसके पहले इसराइल का रहना था। उन्होंने शमरिया को अपने अधिकार में ले लिया और उसके नगरों में रहने लगे। उनके वहां रहने के शुरुआती सालों में उनके मन में यहावे के प्रति भय था ही नहीं। तब यहावे ने उनके बीच शेर भेज दिए, जिन्होंने उनमें से कुछ को अपना कोर बना लिया। इसके बारे में अश्शूर के राजा को सूचित किया गया, जिन राष्ट्रों को आपने ले जाकर शमरिया के नगरों में बसाया है, उन्हें इस देश के देवता की विधि पता नहीं है, इसलिए उसने उनके बीच शेर भेज दिए हैं। अब देखिए, वे प्रजा को मार रहे हैं, क्योंकि प्रजा को इस देश के देवता का पता नहीं है। यह सुन अशेर के राजा ने यह आदेश दिया, जिन पुरोहितों को बंधुआई में लाया गया है, उनमें से एक पुरोहित को वहां भेज दिया जाए कि वह वहां जाकर वहीं रहा करे और वहां बसे इन लोगों को उस देश के देवता की व्यवस्था की शिक्षा दे। तब शमरिया से निकले पुरोहितों में से एक पुरोहित बेथेल नगर में आकर निवास करने लगा, जो उन्हें यहावे के प्रति भय रखने के विषय में शिक्षा देता था। मगर हर एक राष्ट्र अपने अपने देवताओं की मूर्तियां बनाता रहा और उन्हें अपने अपने नगरों के पूजा स्थलों में प्रतिष्ठित करता रहा। उन पूजा स्थलों पर जो शमरिया के मूल वासियों द्वारा बनाए गए थे, यह वे उन सभी नगरों में करते गए जहां वे बसते जा रहे थे। जो लोग बाबेल से आए थे, उन्होंने सुखोत बेनोत की मूर्ति, कूत से आए लोगों ने नेरगल की, हामात से बसे हुए विदेशियों ने आशीमा की, अब भी प्रवासियों ने निभास और तारतक की। इसके अलावा सेफारवी प्रवासियों ने अपने बालकों को अद्राम मेलेक और अन्ना मेलेक के लिए आग में करने सेफरवाइम देवता की प्रथा चालू रखी। हां, उन्होंने भय के कारण यहावे के लिए सभी प्रकार के लोगों में से पुरोहित भी चुन लिए। ये पुरोहित उनके लिए पूजा की जगहों पर बलि चढ़ाया करते थे। संक्षेप में, वे यहावे के प्रति भय रखते हुए भी अपने अपने राष्ट्र के उन देवताओं की उपासना करते रहे जिन राष्ट्रों से लाकर वे यहां बसाए गए थे। आज तक वे अपनी अपनी पहले की प्रथाओं में लगे हैं। वे ना तो यहावे के प्रति भय दिखाते हैं, ना ही वे यहावे द्वारा दी गई विधियों या आदेशों या नियमों या व्यवस्था का पालन करते हैं, जिनके पालन करने का आदेश यहावे द्वारा याकोब के वंशों को दिया गया था, जिन्हें वह इसराइल नाम से बुलाते थे, जिनके साथ यहावे ने वाचा स्थापित की थी और उन्हें यह आदेश दिया था, पराए देवताओं से डरने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही आवश्यकता है उनके सामने झुकने की, ना उन्हें बलि चढ़ाने की और ना उनकी सेवा उपासना करने की। हां, भय उस यहावे के लिए रखो जिन्होंने मिस्र देश से तुम्हें अद्भुत सामर्थ और बढ़ाई हुई भुजा से तुमको निकालकर यहां ले आए हैं। भय उन्हीं के प्रति बनाए रखो, वंदना के लिए उन्हीं के सामने झुको और बलि उन्हें ही चढ़ाओ। इसके अलावा जो विधियां, नियम, व्यवस्था और आदेश उन्होंने तुम्हारे लिए लिखवा दिए हैं, उन्हें तुम हमेशा पालन करते रहो। साथ ही यह जरूरी नहीं कि तुम पराए देवताओं से डरो, तुम उस वाचा को ना भूलना जो मैंने तुम्हारे साथ बांधी है, और ना पराए देवताओं का भय मानना। तुम सिर्फ यहावे अपने परमेश्वर का भय मानना, यहावे ही तुम्हें तुम्हारी सारी शत्रुओं से छुटकारा दिलाएंगे। इतना सब होने पर भी उन्होंने यहावे की बातों पर ध्यान ना दिया, वे अपने पहले के आचरण पर ही चलते रहे। इन जातियों ने यहावे का भय तो माना, मगर साथ ही वे अपनी गढ़ी हुई मूर्तियों की उपासना भी करते रहे। उनकी संतान भी यही करती रही और उनके बाद उनकी संतान भी। जैसा जैसा उन्होंने अपने पिता को करते देखा, उन्होंने आज तक उसी के जैसा किया। राजाओं की दूसरी पुस्तक अध्याय 18। यहूदिया पर हिजकिया का शासन। इज़राइल के राजा एला के पुत्र होशिया के शासन के तीसरे साल में आहाज के पुत्र हिजकिया ने यहूदिया पर शासन करना शुरू किया। जब हिजकिया राजा बना, उसकी उम्र 25 साल थी। यरूशलेम में उसने 29 साल शासन किया। उसकी माता का नाम अबिया था। वह जकरिया की पुत्री थी। उसने वही किया जो यहावे की दृष्टि में सही था, वैसा ही जैसा उसके पूर्वज दाविद ने किया था। उसने पूजा की जगह हटा दी, पूजा के खम्भे तोड़ दिए और अशेरा के खम्भे भी ध्वस्त कर दिए। उसने मोशे द्वारा बनाई उस कांसे के सांप की मूर्ति को भी नष्ट कर दिया, क्योंकि तब तक इज़राइली प्रजा इसे नेहुश्तान नाम से पुकारते हुए इसके सामने धूप जलाने लगे थे। हिजकिया का भरोसा यहावे इज़राइल के परमेश्वर पर था, इसलिए ना उसके बाद और ना ही उसके पहले यहूदिया के सारी राजाओं में उसके समान कोई हुआ। वह यहावे से चिपका रहा, कभी भी उसने यहावे का अनुसरण करना ना छोड़ा। वह मोशे को सौंपे गए यहावे के आदेशों का पालन करता रहा। वह जहां कहीं गया, यहावे उसके साथ रहे। वह उन्नत ही होता चला गया। उसने अश्शूर के राजा के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और उसने अपना दास्तव खत्म कर लिया। उसने अज्जा की सीमा तक फिलिस्तीनियों को हरा दिया, यानी पहरेदारों की मचान से लेकर नगरगढ़ तक। हिजकिया के शासन के चौथे साल में, जो इज़राइल के राजा एला के पुत्र होशिया के शासन का सातवां साल था, अश्शूर के राजा शालमानेसर ने शमरिया पर घेरा डाल दिया और 3 साल पूरा होते होते उन्होंने शमरिया को अपने अधिकार में ले लिया। हिजकिया के शासन का छठवां और इज़राइल के राजा होशिया के शासन का नवा साल था, जब शमरिया पर अश्शूर के राजा का अधिकार हो गया। अश्शूर का राजा इज़राइलियों को बंदी बनाकर अश्शूर देश को ले गया। वहां उसने उन्हें गोजान नदी के तट पर हाला और हाबोर नामक स्थानों में और मेदिया प्रदेशों के नगरों में बसा दिया, क्योंकि उन्होंने यहावे अपने परमेश्वर की वाणी को अनसुनी ही नहीं की, बल्कि उन्होंने उनकी वाचा भी तोड़ दी थी, यहाँ तक कि उन सारी आदेशों को भी जो यहावे के सेवक मोशे ने दिए थे। ना तो उन्होंने इन्हें सुना और ना ही उनका पालन किया। राजा हिजकिया के शासनकाल के 14वें वर्ष में अश्शूर के राजा सेनहेरीब ने यहूदिया के समस्त गढ़ नगरों पर आक्रमण करके उन पर अधिकार कर लिया। यहूदिया के राजा हिजकिया ने लाकीश नगर में अश्शूर के राजा को यह संदेश भेजा, मुझसे गलती हुई है, अपनी सेना यहां से हटा लीजिए। आप मुझ पर जो भी आर्थिक दंड देंगे, मैं उसे पूरा करूंगा। तब अश्शूर के राजा ने यहूदिया के राजा हिजकिया से 10 टन चांदी और 1 टन सोने का दंड तय कर दिया। तब राजा हिजकिया ने यहावे के भवन और राजघराने के खजाने में रखी पूरी चांदी अश्शूर के राजा को सौंप दी। इसी समय हिजकिया ने यहावे के मंदिर के दरवाजों पर मढ़ी गई सोने की परत उतार ली और वैसे ही दरवाजों के मीनारों की भी, जो यहूदिया के राजा हिजकिया द्वारा ही दरवाजों और दरवाजों के मीनारों पर चढ़ाई गई थी। यह उसने अश्शूर के राजा को सौंप दिया। सेनहेरीब द्वारा यहूदिया पर हमला। इस पर अश्शूर के राजा ने लाकीश से राजा हिजकिया के पास अपने सर्वोच्च सेनापति, अपने मुख्य अधिकारी और अपने प्रमुख सेनापति को एक बड़ी सेना के साथ यरूशलेम भेज दिया। यरूशलेम पहुंचकर वे उस ऊपरी तालाब की नाली पर जा खड़े हुए जो सदै कोबेस के राजमार्ग पर बनी है, जब उन्होंने राजा को पुकारा तब गृह प्रबंधक एलियाकीम, जो हिल्किया का पुत्र था, शास्त्री शेबना तथा आसफ का पुत्र योहा, जो प्रालेख अधिकारी था, राजा से भेंट करने गए। प्रमुख सेनापति ने उन्हें आदेश दिया, हिजकिया से जाकर यह कहो, पराक्रमी राजा अश्शूर के राजा का संदेश यह है, कौन है तुम्हारे इस भरोसे का आधार? युद्ध से संबंधित तुम्हारी रणनीति तथा तुम्हारी शक्ति मात्र खोखले शब्द है, किस पर है तुम्हारा अवलंबन कि तुमने मुझसे विद्रोह का साहस किया है? देखो, तुमने जो मिस्र देश पर भरोसा किया है वह है ही क्या, एक टूटा हुआ सरकंडे की छड़ी। यदि कोई व्यक्ति इसकी टेक लेना चाहे तो यह छड़ी उसके हाथ में ही चुभ जाएगी। मिस्र का राजा फरो भी उन सब के लिए ऐसा ही साबित होता है जो उस पर भरोसा करते हैं। हाँ, यदि तुम मुझसे कहो, हम तो यहावे हमारे परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, तो क्या ये वही नहीं है जिनके पूजा स्थल तथा वेदियां हिजकिया ने ध्वस्त कर दी है, तथा यरूशलेम को यह आदेश दिया गया है, तुम्हें यरूशलेम में इसी वेदी के समक्ष आराधना करनी होगी। तो अब आओ और हमारे स्वामी अश्शूर के राजा से मोल भाव कर लो, मैं तुम्हें 2000 घोड़े दूंगा यदि तुम अपनी ओर से उनके लिए 2000 घुड़सवार ला सको तो। रथों और घुड़सवार के लिए मिस्र देश पर निर्भर रहते हुए यह कैसे संभव है कि तुम मेरे स्वामी के छोटे से छोटे सेवक से कर ले उसे हरा दो? क्या मैं यहावे की आज्ञा बिना ही इस स्थान को नष्ट करने आया हूँ? यहावे ही ने मुझे आदेश दिया है, इस देश पर हमला कर इसे खत्म कर दो। तब हिल्किया का पुत्र एलियाकीम, शेबना तथा योआ ने प्रमुख सेनापति से आग्रह किया, अपने सेवकों से आरामी भाषा में संवाद कीजिए, क्योंकि यह भाषा हम समझते हैं, यहूदिया की हिब्री भाषा में संवाद मत कीजिए, क्योंकि प्राचीर पर कुछ लोग हमारा वार्तालाप सुन रहे हैं। किंतु प्रमुख सेनापति ने उत्तर दिया, क्या मेरे स्वामी ने मात्र तुम्हारे स्वामी तथा मात्र तुम्हें यह संदेश देने के लिए मुझे प्रेषित किया है, तथा प्राचीर पर बैठे व्यक्तियों के लिए नहीं, जिनके लिए तो यही दंड निर्धारित है कि वे तुम्हारे साथ स्वयं अपनी विष्ठा का सेवन करें तथा अपने ही मूत्र का पान? यह कहते हुए प्रमुख सेनापति खड़ा हो गया और सबके सामने उच्च स्वर में यहूदिया की हिब्री भाषा में यह कहा, अश्शूर के राजा प्रतिष्ठित सम्राट का यह संदेश सुन लो। सम्राट का आदेश यह है, हिजकिया तुम्हें इस छल में संभ्रमित ना रखे, क्योंकि वह तुम्हें विमुक्त करने में समर्थ ना होगा, ना ही हिजकिया यह कहते हुए तुम्हें यहावे पर भरोसा करने के लिए उकसाए, निसंदेह यहावे हमारा छुटकारा करेंगे, यह नगर अश्शूर के राजा के अधीन होने ना दिया जाएगा। हिजकिया के आश्वासन पर ध्यान ना दो, क्योंकि अश्शूर के राजा का संदेश यह है, मुझसे संधि स्थापित कर लो, नगर से निकलकर बाहर मेरे पास आ जाओ, तब तुम में से हर एक अपनी ही लगाई हुई दाखलता से फल खाएगा, तुम में से हर एक अपने ही अंजीर वृक्ष से अंजीर खाएगा, और तुम में से हर एक अपने ही कुंड में से जल पिएगा। तब मैं आऊंगा और तुम्हें एक ऐसे देश में ले जाऊंगा जो तुम्हारे ही देश के सदृश्य है, ऐसा देश जहां अन्न की उपज है तथा नई द्राक्षा भी। यह भोजन तथा द्राक्षा उद्यानों का देश है, जैतून के पेड़ों और शहद में भरपूर, कि तुम वहां संपन्नता में जी सको, तुम काल का ग्रास ना बनो। तब तुम हिजकिया के आश्वासन पर ध्यान ना देना जब वह तुम्हें यह कहते हुए भटकाएगा, यहावे हमारा छुटकारा कर देंगे। भला कहीं कोई ऐसा हुआ भी है कि पड़ोसी राष्ट्रों के किसी देवता ने अपने देश को अश्शूर के राजा से बचाया हो? कहाँ है हामात तथा अरपाद के देवता? कहाँ है सेफर वाइम हेना और इवा के देवता? और हाँ, उन्होंने शमरिया को कब मेरे अधिकार से विमुक्त किया है? इन देशों के किस देवता ने अपने देश को मेरे हाथों से विमुक्त किया है? यह यहावे यरूशलेम को मेरे हाथों से कैसे विमुक्त करा लेंगे? मगर प्रजा मौन रही, किसी ने भी उसे एक शब्द तक ना कहा, क्योंकि राजा का आदेश ही था उसे उत्तर ना देना। हिल्किय्याह के पुत्र एलियाकीम ने, जो राजघराने में गृह प्रबंधक था, लिपिक शेबना और आसफ के पुत्र योहा ने, जो लेखापाल था, अपने वस्त्र फाड़े और जाकर प्रमुख सेनापति के शब्द राजा को जा सुनाए। राजाओं की दूसरी पुस्तक अध्याय 19। यशाया द्वारा हिजकिय्याह को दिया गया आश्वासन। जब राजा हिजकिय्याह ने यह सब सुना, उसने अपने वस्त्र फाड़ दिए, टाट पहन लिया और यहावे के भवन में चला गया। राजा ने गृह प्रबंधक एलियाकीम, सचिव शेबना, पुर्निया और पुरोहितों को, जो टाट धारण किए हुए थे, आमोज के पुत्र भविष्यद्वक्ता यशाया के पास भेजा। उन्होंने जाकर यशाया से विनती की, हिजकिय्याह की यह विनती है, आज का दिन संकट, फटकार और अपमान का दिन है। प्रसव का समय आ पहुंचा है, मगर प्रसूता में प्रसव के लिए शक्ति ही नहीं रह गई। संभव है यहावे आपके परमेश्वर प्रमुख सेनापति द्वारा कहे गए सभी शब्द सुन ले, जो उसके स्वामी अश्शूर के राजा ने जीवित परमेश्वर की निंदा में उससे कहलवाए थे। संभव है इन शब्दों को सुनकर यहावे आपके परमेश्वर उसे फटकार लगाए। इसलिए कृपा कर यहाँ प्रजा के बचे हुओं के लिए आकर प्रार्थना कीजिए। जब राजा हिजकिय्याह के सेवक यशाया के पास पहुंचे, यशाया ने उनसे कहा, अपने स्वामी से कहना, यहावे का संदेश यह है, उन शब्दों के कारण जो तुमने सुने हैं, जिनके द्वारा अश्शूर के राजा के सेवकों ने मेरी निंदा की है, तुम डरना मत। तुम देख लेना, मैं उसमें एक ऐसी आत्मा डाल दूंगा कि उसे उड़ते उड़ते समाचार सुनाई देने लगेंगे और वह अपने देश को लौट जाएगा, और ऐसा कुछ करूंगा कि वह अपने ही देश में तलवार का कोर हो जाएगा। जब प्रमुख सेनापति यरूशलेम से लौटा, उसने पाया कि अश्शूर राजा लाकीश छोड़कर जा चुका था और वह लिब्ना से युद्ध कर रहा था। जब उसने कूश के राजा तिरहाका से यह सुना कि वह उससे युद्ध करने निकल पड़ा है, तब उसने अपने संदेशवाहकों को हिजकिय्याह के पास यह कहकर भेजा, तुम यहूदिया के राजा हिजकिय्याह से यह कहना, जिस परमेश्वर पर तुम भरोसा करते हो, वह तुमसे यह प्रतिज्ञा करते हुए छल ना करने पाए कि यरूशलेम अश्शूर के राजा के अधीन नहीं किया जाएगा। तुम यह सुन ही चुके हो कि अश्शूर के राजाओं ने सारी राष्ट्रों को कैसे नाश कर दिया है। क्या तुम बचकर सुरक्षित रह सकोगे, जब मेरे पूर्वजों ने गोजान, हारान, रेतसेफ और तेलासर में एदेन की प्रजा को खत्म कर डाला था? क्या उनके देवता उनको बचा सके थे? कहाँ है हामात का राजा, अरपाद का राजा, सेफरवाइम नगर का राजा और हेना और इवा के राजा? हिजकिय्याह की प्रार्थना। इसके बाद हिजकिय्याह ने पत्र ले आने वालों से वह पत्र लेकर उसे पढ़ा और यहावे के भवन को चला गया और उस पत्र को खोलकर यहावे के सामने रख दिया। हिजकिय्याह ने यहावे से यह प्रार्थना की, सर्वशक्तिमान यहावे, इज़राइल के परमेश्वर, आप जो करूबों के बीच सिंहासन पर विराजमान है, परमेश्वर आप ही ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, अपने कान मेरी ओर कीजिए, यहावे मेरी प्रार्थना सुन लीजिए, अपनी आंखें खोल दीजिए और यहावे देख लीजिए और उन शब्दों को सुन लीजिए जो सेनहेरीब ने जीवित परमेश्वर का मजाक उड़ाते हुए कहे हैं। यहावे, यह सच है कि अश्शूर के राजाओं ने जनताओं को और उनकी भूमि को उजाड़ कर छोड़ा है और उनके देवताओं को आग में डाल दिया है, सिर्फ इसलिए कि वे देवता थे ही नहीं, वे तो सिर्फ मनुष्य के बनाए हुए थे, सिर्फ लकड़ी और पत्थर, इसलिए वे नाश कर दिए गए। अब हे यहावे हमारे परमेश्वर, हमें उनके हाथ से बचा ताकि पूरी पृथ्वी को यह मालूम हो जाए कि यहावे केवल आप ही परमेश्वर है। यशाया द्वारा यहावे का प्रत्युत्तर। तब आमोज के पुत्र यशाया ने हिजकिय्याह से कहा, यहावे इज़राइल का परमेश्वर यों कहता है, इसलिए कि तुमने अश्शूर के राजा सेनहेरीब के संबंध में मुझसे विनती की, उसके विरुद्ध कहे गए यहावे के शब्द ये हैं, जियोन की कुवारी कन्या ने तुम्हें तुच्छ समझा है, तुम्हारा मजाक उड़ाया है। यरूशलेम की पुत्री पलायन करने वाले तुम्हारी पीठ देखकर सिर हिलाती है। तुमने किसका अपमान और किसकी निंदा की है, किसके विरुद्ध तुमने आवाज ऊंची की है और किसके विरुद्ध तुम्हारी दृष्टि घमंड से उठी है। इसराइल के महापवित्र की ओर तुमने अपने दूतों के द्वारा यहावे की निंदा की है। तुमने कहा, अपने रथों की बड़ी संख्या लेकर मैं पहाड़ों की ऊंचाइयों पर चढ़ आया हूँ। हाँ, लबानोन के दुर्गम दूर के स्थानों तक मैंने सबसे ऊंचे देवदार के पेड़ काट गिराए हैं। इसके सबसे उत्तम सनोवरों को भी मैंने इसके दूर दूर के घरों में प्रवेश किया। हाँ, इसके घने वनों में भी मैंने कुएं खोदे और प्रदेश का जल पिया। अपने पाँव के तलवों से मैंने मिस्र की सभी नदियां सुखा दी। क्या तुमने सुना नहीं? इसका निश्चय मैंने बहुत साल पहले कर लिया था। इसकी योजना मैंने बहुत पहले ही बना ली थी, जिसको मैं अब पूरा कर रहा हूँ, कि तुम गढ़ नगरों को खंडरों का ढेर बना दो। जब नगरवासी का बल जाता रहा, उनमें निराशा और लज्जा फैल गई। वे मैदान की वनस्पति और जड़ी बूटी के समान हरे हो गए, वैसे ही जैसे छत पर उग आई घास बढ़ने के पहले ही मुरझा जाती है। मगर तुम्हारा उठना बैठना मेरी दृष्टि में है, तुम्हारा भीतर आना और बाहर जाना भी, और मेरे विरुद्ध तुम्हारा तेज गुस्सा भी। मेरे विरुद्ध तुम्हारे तेज गुस्से के कारण और इसलिए कि मैंने तुम्हारे घमंड के विषय में सुन लिया है, मैं तुम्हारी नाक में अपनी नकेल डालूंगा और तुम्हारे मुख में लगाम, और तब मैं तुम्हें मोड़कर उसी मार्ग पर चलाऊंगा जिससे तुम आए थे। तब हिजकिय्याह, तुम्हारे लिए यह चिन्ह होगा, इस साल तुम्हारा भोजन उस उपज का होगा जो अपने आप उगती है, अगले साल वह जो इसी से उपजेगी, तीसरे साल तुम बीज बोओगे, उपज काटोगे, अंगूर के बगीचे लगाओगे और उनके फल खाओगे। तब यहूदा गोत्र का बचा हुआ भाग दोबारा अपनी जड़ें भूमि में गहरे जाकर मजबूत करता जाएगा और ऊपर वृक्ष फलवंत होता जाएगा, क्योंकि यरूशलेम से एक बचा हुआ भाग ही विकसित होगा, जियोन पर्वत से जो भागे हुए लोग, सेनाओं के यहावे के जलन ही यह सब करेगा। इसलिए अश्शूर के राजा के बारे में मेरा यह संदेश है, वह ना तो इस नगर में प्रवेश करेगा, ना वह वहां बाण चलाएगा, ना वह इसके सामने ढाल लेकर आएगा, और ना ही वह इसकी घेराबंदी के लिए ढलान ही बना पाएगा। वह तो उसी मार्ग से लौट जाएगा जिससे वह आया था। वह इस नगर में प्रवेश ही ना करेगा, यह यहावे का संदेश है। क्योंकि अपनी और अपने सेवक दाविद की महिमा के लिए मैं इसके नगर की रक्षा करूंगा। उसी रात ऐसा हुआ कि यहावे के एक दूत ने अश्शूरी सेना के शिविर में जाकर 185,000 सैनिकों को मार दिया। सुबह जागने पर लोगों ने पाया कि सारे सैनिक मर चुके थे। यह होने पर अश्शूर का राजा सेनहेरीब अपने देश लौट गया और नीनवे नगर में रहने लगा। एक बार जब वह अपने देवता निसरोक के मंदिर में उसकी उपासना कर रहा था, उसी के पुत्रों अद्राम्मेलेक और शारजर ने तलवार से उस पर वार किया और वे अरारात प्रदेश में जाकर छिप गए। उसके स्थान पर उसके पुत्र एसार हदन ने शासन करना शुरू किया। राजाओं की दूसरी पुस्तक अध्याय 20। हिजकिय्याह की रोग और मुक्ति। उन्हीं दिनों में हिजकिय्याह को ऐसा रोग हो गया कि वह मरने पर था। आमोज के पुत्र भविष्य दोक्ता यशाया उससे मिलने आए। उन्होंने हिजकिय्याह से कहा, यहावे का संदेश यह है, अपने परिवार की व्यवस्था कर लीजिए, क्योंकि आपकी मृत्यु होनी ही है, आपका रोग से ठीक हो पाना संभव नहीं। यह सुन हिजकिय्याह ने अपना मुंह दीवार की ओर कर यहावे से यह प्रार्थना की, यहावे कृपा कर याद करे कि मैं पूरे मन से कैसे सच्चाई में आपके सामने आचरण करता रहा हूँ, और मैंने वही किया है जो आपकी दृष्टि में सही है। तब हिजकिय्याह फूट फूट कर रोने लगा। यशाया अभी बीच के आंगन के बाहर भी ना जा पाए थे कि उन्हें यहावे का यह संदेश प्राप्त हुआ, लौट जाओ और मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिया से जाकर यह कहो, तुम्हारे पूर्वज दाविद के परमेश्वर का संदेश यह है, मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है, मैंने तुम्हारा आंसू बहाना देखा है, यह देखना कि मैं तुम्हें चंगा कर दूंगा, तीसरे दिन तुम यहावे के भवन को जाओगे। मैं तुम्हारी आयु 15 साल और बढ़ाता हूँ, मैं तुम्हें और इस नगर को अशूर के राजा के अधिकार से मुक्त कर दूंगा। मैं अपनी महिमा और अपने सेवक दाविद के निमित्त इस नगर की रक्षा करूंगा। फिर यशाया ने हिजकिया के सेवकों से यह भी कहा, सूखे अंजीरों की एक टिकिया ले आओ। उन्होंने उसे राजा के फोड़े पर रख दिया और राजा चंगा हो गया। हिजकिया ने यशाया से यह प्रश्न किया था, यहावे मुझे चंगा कर देंगे और तीसरे दिन मैं यहावे के भवन को जाऊंगा, इसका क्या चिन्ह होगा? यशाया ने उत्तर दिया, यहावे अपने वचन पूरा करेंगे, इसके लिए यहावे की ओर से चिन्ह यह होगा, आप यह बताइए, क्या छाया 10 कदम आगे जाए या 10 कदम पीछे? हिजकिया ने उत्तर दिया, छाया का 10 कदम लंबी हो जाना आसान है, नहीं ऐसा कीजिए कि छाया 10 कदम पीछे लौट जाए। भविष्यद्वक्ता यशाया ने यहावे की दोहाई दी और यहावे ने छाया को 10 कदम पीछे हटा दिया, जिससे छाया आहाज द्वारा बनवाई गई सोपानों पर 10 कदम नीचे उतर चुकी थी। बाबेल से राजदूत। उसी समय बाबेल के राजा बलादान के पुत्र मेरोदाक बालादान ने हिजकिया को पत्र और उपहार भेजे, क्योंकि उसने राजा की बीमारी का समाचार सुन रखा था। हिजकिया उनकी बातें ध्यान से सुनता रहा, फिर उनका स्वागत करते हुए उसने उन्हें अपना सारा खजाना, सोना चांदी और सभी मसाले, कीमती तेल, अपना हथियार घर और अपने भंडार घर की सारी वस्तुएं दिखा दी, यानी सभी कुछ जो उसके खजानों में जमा था। उसके घर में या उसके सारी राज्य में ऐसा कुछ ना था जो उसने उन्हें ना दिखाया हो। यह होने के बाद भविष्यद्वक्ता यशाया राजा हिजकिया से भेंट करने गए और उनसे कहा, क्या कह रहे थे ये लोग, ये कहाँ से आए थे? हिजकिया ने उत्तर दिया, वे एक दूर देश से आए थे, बाबेल से। भविष्यद्वक्ता यशाया ने राजा से पूछा, क्या क्या देखा उन्होंने आपके घर का? हिजकिया ने उत्तर दिया, जो कुछ मेरे घर में है वे सभी कुछ देखे गए हैं, मेरे खजाने में ऐसा कुछ भी नहीं है जो उन्होंने ना देखा हो। यह सुन यशाया ने हिजकिया से कहा, यहावे का संदेश सुनिए, यह देख लेना कि वे दिन आ रहे हैं जब वह सभी कुछ जो आपके घर में है, वह सब जो आपके पूर्वजों द्वारा आज तक इकट्ठा किया गया है, बाबेल को ले जाया जाएगा, कुछ भी बाकी ना रह जाएगा। यह यहावे का संदेश है, तुम्हारे ही अपने पुत्रों में से कुछ को, तुम्हारे ही मांस और रक्त को बंधुआई में ले जाया जाएगा, वे बाबेल के राजा के राजघराने में नपुंसक बना दिए जाएंगे। तब हिजकिया ने यशाया से कहा, यहावे का वचन जो तुमने कहा वह भला ही है। फिर कहा, कम से कम मेरे जीवन काल में तो शांति एवं सुरक्षा तो बनी रहेगी। हिजकिया द्वारा किए गए बाकी कामों का, उसकी वीरता का और उसके द्वारा बनाए गए जलाशय और नगर में नहरों द्वारा जल पहुंचने का ब्यौरा यहूदिया के राजाओं की इतिहास की पुस्तक में दिया गया है। हिजकिया हमेशा के लिए अपने पूर्वजों में जा मिला। उसके स्थान पर उसके पुत्र मनश्शे ने शासन करना शुरू किया। राजाओं की दूसरी पुस्तक अध्याय 21। यहूदिया पर मनश्शे का शासन। शासन शुरू करते समय मनश्शे की उम्र 12 साल थी। यरूशलेम में उसने 55 साल शासन किया। उसकी माता का नाम हेपजीबा था। उसने वही किया जो यहावे की दृष्टि में गलत था, वही सभी जो उन जनताओं के समान घृणित था जिन्हें यहावे ने इसराइल के सामने से निकाल दिया था। उसने उन पूजा स्थलों को दोबारा बनवाया जिन्हें उसके पिता हिजकिया ने गिरा दिया था। उसने देवता बाल की वेदियां दोबारा बनवाई और अशेरा के खंभे को दोबारा ठीक करा दिया, ठीक जिस प्रकार इज़राइल के राजा अहाब ने किया था, वह भी आकाशमंडल के सारे नक्षत्रों की सेवा उपासना करता था। उसने यहावे के उसी भवन में अनेक वेदियां बनवा दी, जिस भवन के बारे में यहावे कह चुके थे, यरूशलेम में मैं अपने नाम को स्थापित करूंगा। उसने यहावे के ही भवन के दो आंगनों में आकाशमंडल के सारे नक्षत्रों के लिए वेदियां बनवाई। उसने अपने पुत्र की होमबलि दे दी, वह मोहिनी शकुन विचारने और प्रेत सिद्धि को मानने लगा। यहावे की दृष्टि में घोर बुराई कर उसने यहावे के क्रोध को उकसा दिया। उसने अशेरा देवी की ढाली गई मूर्ति की प्रतिष्ठा उस भवन में कर दी, जिसके विषय में यहावे ने दाविद और उनके पुत्र शलोमोन से यह कहा था, मैं इस भवन में और यरूशलेम नगर में, जिसे मैंने इज़राइल के सारी गोत्रों में से चुन लिया है, हमेशा के लिए अपना नाम स्थापित करूंगा। इसके अलावा मैं इज़राइल के चरणों को इस देश से, जिसे मैंने उनकी संतानों के लिए दिया है, बाहर भटकने ना दूंगा, यदि वे सावधानी पूर्वक सिर्फ वह करें जिसका मैंने उन्हें आदेश दिया है और जिस व्यवस्था का आदेश मेरे सेवक मोशे द्वारा उन्हें दिया गया, मगर उन्होंने इसको नहीं माना। मनश्शे ने उन्हें बुराई करने के लिए इस हद तक भटका दिया, जितना उन जनताओं ने तक न किया था जिन्हें यहावे ने इज़राइल प्रजा के सामने से नाश किया था। तब यहावे ने अपने सेवक भविष्यवक्ता के द्वारा यह संदेश भेजा, इसलिए कि यहूदिया के राजा मनश्शे ने ऐसे घृणित काम किए हैं, अपने पहले इस देश में रहते हुए अमोरियों द्वारा किए गए सभी कामों से अधिक घृणित, और अपनी मूर्तियों के लिए यहूदिया को भी वही करने के लिए मजबूर किया। इसलिए यहावे इज़राइल के परमेश्वर का यह संदेश है, देख लेना, मैं यरूशलेम और यहूदिया पर ऐसी मुसीबत ला रहा हूँ कि जो कोई इसके बारे में सुनेगा उसके दोनों ही कान झनझना जाएंगे। मैं यरूशलेम के ऊपर शमरिया के समान माप की डोरी और अहाब के वंश के समान साहूल का उपयोग करूंगा। मैं यरूशलेम को ऐसे पोंछ दूंगा जैसे बर्तन को पोंछा जाता है, इसे पोंछकर मैं उसे उलट रख दूंगा। मैं अपनी मीरास के बचे हुए भाग का त्याग कर दूंगा और उन्हें उनके शत्रुओं के हाथों में सौंप दूंगा, वे उनके सभी शत्रुओं द्वारा लूटे और लूटा हुआ सामान हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने वही किया है जो मेरी दृष्टि में बुरा है, और इससे उन्होंने मेरे गुस्से को भड़काया है। ऐसा वे उसी समय से जब उनके पूर्वज मिस्र देश से बाहर निकल आए थे आज तक करते आ रहे हैं। उस पाप के अलावा जो उसने यहूदिया को वह करने के लिए उकसाया, जो यहावे की दृष्टि में गलत था, मनश्शे ने अनगिनत निर्दोषों का बहुत लहू बहाया कि यरूशलेम एक छोर से दूसरे छोर तक लहू लुहान हो गया। मनश्शे द्वारा किए गए बाकी कामों, उसकी उपलब्धियों और उसके द्वारा किए गए पापों का ब्यौरा यहूदिया के राजाओं की इतिहास की पुस्तक में दिया गया है। मनश्शे हमेशा के लिए अपने पूर्वजों में जा मिला और उसे उसी के महल की वाटिका, उज्जा की वाटिका में ही गाड़ दिया। उसके स्थान पर उसका पुत्र अमोन शासन करने लगा। यहूदिया में अमोन का शासन। राजा बनने के अवसर पर अमोन की उम्र 22 साल थी। यरूशलेम में उसने 2 साल शासन किया। उसकी माता का नाम मेशुलेमेत था। वह योतबा नगर के हारूस की पुत्री थी। उसने वह किया जो यहावे की दृष्टि में गलत है, जैसा उसके पिता मनश्शे ने किया था। उसका सारा आचरण ठीक वैसा ही था जैसा उसके पिता का था। वह मूर्तियों की सेवा उपासना करता था, उन्हें ही नमन करता था जिनकी सेवा उपासना उसका पिता करता रहा था। इस प्रकार उसने यहावे अपने पिता के परमेश्वर को छोड़ दिया और यहावे के मार्ग का अनुसरण ना किया। अमोन के सेवकों ने उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचा और उसी के घर में राजा की हत्या कर दी, मगर प्रजाजनों ने उन सभी की हत्या कर दी जिन्होंने राजा अमोन के विरुद्ध षड्यंत्र रचा था। उन्होंने उसके स्थान पर उसके पुत्र योशिया को राजा बनाया। अमोन द्वारा किए गए अन्य कामों का ब्यौरा यहूदिया के राजाओं की इतिहास की पुस्तक में दिया गया है। उसका अंतिम संस्कार उज्जा की वाटिका में स्थित कब्र में किया गया। उसकी जगह पर उसके पुत्र योशिय्याह ने शासन शुरू किया। राजाओं की दूसरी पुस्तक अध्याय 22। व्यवस्था की पुस्तक पाई जाती है। शासन शुरू करते समय योशिय्याह की उम्र 8 साल थी। उसने यरूशलेम में 31 साल शासन किया। उसकी माता का नाम यदीदा था। वह बोध सकत नगर के अदाहिया की पुत्री थी। उसने वह किया जो यहावे की दृष्टि में सही था। अपने पूर्वज दाविद की सारी मार्गों का आचरण करता रहा। वह इनसे ना तो दाएं मुड़ा और ना बाएं। राजा योशिय्याह के राज्य के 18वें वर्ष में राजा ने मेशुल्लाम के पोते अजलिया के पुत्र शापान को, जो सचिव था, इस आदेश के साथ यहावे के भवन को भेजा, महापुरोहित हिल्किय्याह के पास जाइए कि वह यहावे के भवन में लाए गए दान की गिनती करे, जो द्वारपालों द्वारा आराधकों से इकट्ठा किया गया है। यह धन यहावे के भवन के लिए चुने गए अधिकारियों को सौंप दिया जाए और वे इसे उन्हें देते जाए जिनकी जवाबदारी यहावे के भवन की मरम्मत करना है, यानी बढ़ई, तराशने वालों और राजमिस्त्रियों को, कि वे भवन की मरम्मत के लिए जरूरी लकड़ी और तराशी गई चट्टानें ले आए। इनसे लेन देन का लेखा ना लिया जाए, क्योंकि वे अपने लेन देन में सच्चे हैं। महापुरोहित हिल्किय्याह ने लिपिक शापान को सूचित किया, यहावे के भवन में मुझे व्यवस्था की पुस्तक मिली है। हिल्किय्याह ने पुस्तक शापान को सौंप दी। शापान ने उसे पढ़ा। लिपिक शापान ने राजा के पास जाकर उसे इसकी सूचना दी। भवन में रखी सारी चांदी निकाल ली गई है और यह धन उन कर्मचारियों को दे दिया गया है जिन्हें यहावे के भवन के देखरेख की जवाबदारी सौंपी गई है। इसके बाद लिपिक शापान ने राजा को यह सूचना भी दी, पुरोहित हिल्किय्याह ने मुझे एक पुस्तक दी है। शापान ने राजा के सामने उस पुस्तक में से पढ़कर सुनाया। जब राजा ने व्यवस्था की पुस्तक से सुना, उसने अपने वस्त्र फाड़ दिए। राजा ने पुरोहित हिल्किय्याह, शापान के पुत्र अहीकाम, मीखाया के पुत्र अखबोर, लिपिक शापान और राजा के सेवक असाहिया को यह आदेश दिया, इस पुस्तक में हमारे लिए जो लिखा है उसके विषय में मेरी ओर से, यहूदिया और प्रजा की ओर से यहावे की इच्छा मालूम करो, क्योंकि भयंकर है यहावे का क्रोध जो हमारे लिए भड़का है, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने इस पुस्तक के आदेशों का पालन नहीं किया है। उन्होंने वह सब नहीं किया जो इस पुस्तक में हमारे लिए लिखा है। तब पुरोहित हिल्किय्याह, अहीकाम, अखबोर, शापान और असाहिया हुल्दा नामक स्त्री से भेंट करने गए, जो एक भविष्यद्वक्ता थी। वह वस्त्रों के रखवाले शल्लूम की पत्नी थी, जो तिकवा का पुत्र अरहास का पोता था। वह यरूशलेम के मिशनेह क्षेत्र में रहती थी। उन्होंने हुल्दा से सलाह मशवरा किया। हुल्दा ने उन्हें उत्तर दिया, यहावे इज़राइल के परमेश्वर का संदेश यह है, जिस व्यक्ति ने तुम्हें मुझसे मिलने के लिए भेजा है उससे यह कहना, यहावे का संदेश यह है, देख लेना, इस देश और इसके वासियों पर मैं बुराई भेजूंगा। वे सभी बातें जो यहूदिया के राजा ने पढ़े हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे त्याग दिया है और वे पराए देवताओं के सामने धूप जलाते हैं। वे अपने हाथ से बनाई हुई सारी वस्तुओं के द्वारा मेरे क्रोध को भड़काए, इसलिए इस स्थान के विरुद्ध मेरा क्रोध भड़का है और मेरा क्रोध शांत ना होगा। मगर यहूदिया के राजा जिसने तुम्हें मेरे पास भेजा है कि मैं यहावे से उनकी इच्छा पता करूं, उससे तुम यह कहना, यहावे इज़राइल के परमेश्वर का संदेश यह है उन बातों के बारे में जो तुमने सुनी है, इसलिए कि तुम्हारा मन दीन है और तुमने खुद को यहावे के सामने विनम्र बना लिया जब तुमने मुझे इस जगह और इसके निवासियों के विरुद्ध कहते सुना कि वे उजड़ जाएंगे, शाप बन जाएंगे। तुमने अपने वस्त्र फाड़े और तुमने मेरे सामने विलाप किया है। विश्वास करो, मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है। यह यहावे की घोषणा है, इसलिए सुनो, मैं तुम्हें तुम्हारे पूर्वजों में मिला दूंगा। शांतिपूर्ण स्थिति में तुम्हारा अंतिम संस्कार होगा। इस स्थान पर जो बुराई मेरे द्वारा भेजी जाएगी उसे तुम्हारी आंखें ना देखेंगी। यह संदेश उन्होंने राजा को जा सुनाया। राजाओं की दूसरी पुस्तक अध्याय 23। योशिया द्वारा वाचा का नवीकरण। इसके बाद राजा ने यहूदिया और यरूशलेम के पुरनियों को बुलाकर उन्हें इकट्ठा किया। राजा यहावे के भवन को गया, उसके साथ यहूदिया और यरूशलेम के निवासी, इनके पुरोहित, भविष्य दोक्ता और साधारण और विशेष लोग भी गए थे। राजा ने वाचा की पुस्तक का सारा पाठ पढ़ा, वही पुस्तक जो यहावे के भवन में पाई गई थी, और वे सब सुन रहे थे। राजा खंभे के पास खड़ा हुआ और यहावे के सामने यह वाचा बांधी कि वह यहावे का अनुसरण करेगा, इस वाचा के एक एक वचन का पालन करने के लिए वह उनकी आज्ञाएं, चेतावनियां और नियमों का पालन संपूर्ण हृदय और संपूर्ण प्राणों से करेगा, जैसा इस पुस्तक में लिखा हुआ है। वहां उपस्थित सारी भीड़ इस वाचा में शामिल हो गई। राजा ने महापुरोहित हिल्किय्याह, नीचे के वर्ग के पुरोहितों और द्वारपालों को आदेश दिया कि यहावे के मंदिर में से वे सभी बर्तन बाहर लाए जाए जो बाल अशेरा और आकाशमंडल के नक्षत्रों के लिए बनाए गए थे। राजा ने इन बर्तनों को यरूशलेम के बाहर किद्रोन घाटी के मैदानों में जला दिया और उनकी राख बेथेल ले गया। उसने मूर्ति पूजने वाले उन पुरोहितों को निकाल दिया जिन्हें यहूदिया और यरूशलेम के पास के पूजा स्थलों पर सूर्य, चंद्र, आकाशमंडल के नक्षत्रों और आकाश की शक्तियों के लिए धूप जलाने के लिए यहूदिया के राजाओं द्वारा चुना गया था। राजा ने यहावे के भवन से अशेरा को बाहर निकलवा दिया और यरूशलेम के बाहर किद्रोन नाले में ले जाकर जला दिया और उसे पीसकर चूर चूर कर दिया और इस चूरे को लोगों पर फेंक दिया। राजाओं ने पुरुष वेश्याओं के घर भी ढा दिए जो यहावे के भवन के आंगन में बनाए गए थे, जहां स्त्रियां अशेरा देवी के लिए दीवार सजाने के वस्त्र बुना करती थी। राजा ने यहूदिया के सारी नगरों से पुरोहितों को इकट्ठा कर गेबा से बेशरबा तक पूजा स्थलों को, जहां पुरोहित धूप जलाया करते थे, दूषित कर दिया। फिर द्वारों पर प्रतिष्ठित पूजा स्थलों को, अर्थात जो हाकिम यहोशू के फाटक के पास थे, और फाटकों के बाईं ओर ढाली गई मूर्तियों को नाश कर दिया। फिर भी पूजा स्थलों के पुरोहित यरूशलेम में यहावे की वेदी के पास नहीं आए। हाँ, वे अपने भाइयों के साथ खमीर रहित रोटी के भोजन में जरूर शामिल होते रहे। उसने तोफेत को अशुद्ध कर दिया जो बेन हिन्नोम घाटी में था, ताकि इसके बाद कोई भी मोलेक को बलि चढ़ाने के लिए यहां अपने पुत्र या पुत्री को बलि ना करे। उसने यहावे के भवन के द्वार के निकट से अधिकारी नाथान मेलेक के कमरे के पास से उन घोड़ों की मूर्तियों को, जिन्हें यहूदियां के राजाओं से सूरज को समर्पित किया हुआ था, आंगन के बाहर कर दिया। फिर उसने सूर्य रथों को आग में भस्म कर दिया। यहूदिया के राजाओं द्वारा आहाज के ऊपरी कमरे की छत पर बनी वेदियों को और यहावे के भवन के दोनों आंगनों में मन शशे द्वारा बनाई गई वेदियों को उसने ध्वस्त कर चूर चूर कर दिया और उनके चूरे को किद्रोन नाले में फेंक दिया। राजा ने उन पूजा स्थलों को जो यरूशलेम के सामने विनाश के पर्वत के दाईं ओर थे दूषित कर दिया, जिन्हें इसराइल के राजा शलोमोन ने सीदोनी वासियों की घृणित देवी अश्तोरेत के लिए, मोआब के घृणित देवता खेमोश और अमोन वासियों के घृणित देवता मिलकाम के लिए बनवाया था। राजा ने मीनारों को टुकड़े टुकड़े कर डाला, अशेरा की मूर्तियों को काट डाला और उन खाली स्थानों को मानव हड्डियों से भर दिया। इसके अलावा उस वेदी को जो बेथेल में बनाई गई थी और वह पूजा स्थल जिसको नेबात के पुत्र यरोबोअम ने बनवाया था, जिसने इज़राइल को पाप करने के लिए उकसाया था, इसी वेदी और पूजा स्थल को उसने ढा दिया, उन्हें पीसकर चूरा बना दिया और अशेरा को भस्म कर डाला। यह करते हुए जैसे ही योशिया मुड़ा, उसकी दृष्टि पहाड़ में खोदी गई कब्रों की गुफाओं पर गई। उसने सेवक भेज उनमें से अस्थियां निकलवा ली उन्हें वेदी पर जलाकर वेदी को दूषित किया, ठीक जैसा परमेश्वर के जन ने यहावे के संदेश के अनुसार घोषणा की थी। तब राजा ने पूछा, वह किसका स्मारक है जो मैं इस समय देख रहा हूँ? लोगों ने राजा को बताया, यह परमेश्वर के उन्हीं जनों की कब्र की गुफा है जो यहूदिया से आए थे, और आपने जो कुछ आज देवता बाल की वेदी के साथ किया है, उन्होंने उसकी भविष्यवाणी कर दी थी। राजा ने आदेश दिया, उसे ऐसा ही रहने दिया जाए, कोई भी उसकी अस्थियों को ना हटाए। तब उन्होंने उनकी अस्थियों को नहीं छुआ और उन्हें शमरिया के भविष्यद्वक्ता की अस्थियों के साथ ही रहने दिया। योशिया ने शमरिया राज्य के नगरों में पूजा स्थलों के भवनों को गिरा दिया जो इज़राइल के राजाओं द्वारा बनाए गए थे, जिनके कारण यहावे का क्रोध भड़क उठा था। राजा ने उनके साथ वही किया जो उसने बेथेल की वेदियों के साथ किया था। उसने पूजा स्थलों के सारे पुरोहितों को उन्हीं की वेदियों पर मारकर उन पर मनुष्यों की अस्थियां जला दी। फिर वह यरूशलेम लौट गया। राजा ने सभी लोगों को आदेश दिया, जैसा वाचा की पुस्तक में लिखा है, यहावे अपने परमेश्वर के लिए फसह उत्सव मनाया जाए। इज़राइल पर न्यायियों के शासनकाल से या इज़राइल के राजाओं के शासनकाल से या यहूदिया के राजाओं के शासनकाल से अब तक फसह उत्सव मनाया ही नहीं गया था, मगर राजा योशिया के शासनकाल के 18वें साल में यरूशलेम में यहावे के लिए यह फसह उत्सव मनाया गया। इसके अलावा प्रेत साधकों, टोनों, ग्रह देवताओं, मूर्तियों और सारे यहूदी राज्य और यरूशलेम की हर एक घृणित वस्तु को हटा दिया गया कि राजा उस पुस्तक में लिखी विधियों की पुष्टि कर सके जो पुस्तक पुरोहित हिल्किया को यहावे के भवन में मिली थी। इसके पहले ऐसा कोई भी राजा ना हुआ जो मोशे की व्यवस्था के अनुसार अपने पूरे हृदय, पूरे प्राण और पूरी सामर्थ से यहावे की ओर फिरा हो। वैसे ही उसके बाद भी उसके बराबर और कोई राजा ना हुआ। इतना सब होने पर भी यहावे का वह भयंकर क्रोध जो यहूदिया के विरुद्ध भड़का था शांत ना हुआ, क्योंकि मनश्शे ने अपनी सारी हरकतों के द्वारा उनका क्रोध भड़का दिया था। यहावे ने कहा, मैं यहूदिया को भी अपनी दृष्टि से दूर कर दूंगा, जैसे मैंने इज़राइल को दूर किया है। मैं इस नगर यरूशलेम को भी छोड़ दूंगा जिसे मैंने खुद चुना, और उस मंदिर को भी जिसके विषय में मैंने यह घोषणा की थी, इस स्थान पर मेरी महिमा रहेगी। योशिया द्वारा किए गए अन्य कामों और उसकी उपलब्धियों का ब्यौरा यहूदिया के राजाओं की इतिहास की पुस्तक में दिया गया है। उसके शासनकाल में मिस्र का राजा फरो नेको अश्शूर के राजा से भेंट करने फरात नदी की ओर बढ़ा। राजा योशिया उससे भेंट करने के उद्देश्य से वहां गया। उसे मगीदो में देखते ही फरो नेको ने उसकी हत्या कर दी। उसके सेवक उसकी मृत देह को रथ में मगीदो से यरूशलेम लाए और उसे उसी की कब्र की गुफा में रख दिया। प्रजा ने योशिया के पुत्र यहो आहाज का राज अभिषेक कर उसके पिता के स्थान पर उसे राजा बनाया। यहो आहाज का शासन एवं बंदित्व। शासन शुरू करते हुए यहो आहाज की उम्र 23 साल थी। यरूशलेम में उसने 3 महीने शासन किया। उसकी माता का नाम हामूतल था। वह लिबनावासी यरेमिया की पुत्री थी। यहो आहाज ने अपने पूर्वजों के समान वही सब किया जो यहावे की दृष्टि में गलत था। फरो नेको ने उसे बंदी बनाकर हामात देश के रिबला नगर में रखा कि वह यरूशलेम में शासन ना कर सके। उसने राष्ट्र पर 3 टन 5 किट्टल चांदी और 35 किलो सोने का जुर्माना लगा दिया। फरो नेको ने योशिया के पुत्र एलियाकीम को उसके पिता योशिया के स्थान पर शासक बना दिया और उसका नाम बदलकर यहो इयाकीम रख दिया। मगर वह यहो आहाज को अपने साथ मिस्र ले गया। वहीं यहो आहाज की मृत्यु हो गई। यहो याकीम ने फरो नेको को सोना और चांदी उपहार में तो दिए, मगर इसके लिए उसने देश पर कर लगा दिया कि फरो के आदेश के अनुसार उसे वह धनराशि चुकाए। इसलिए वह अपने ही आकलन के आधार पर प्रजा से जबरदस्ती सोना और चांदी लेने लगा। यहूदिया पर यहोयाकीम का शासन। यहोयाकीम ने जिस समय शासन शुरू किया उसकी उम्र 25 साल थी। यरूशलेम में उसने 11 साल शासन किया। उसकी माता का नाम जेबीदा था। वह रूमावासी पैदाइया की पुत्री थी। यहोयाकीम ने अपने पूर्वजों के समान वही किया जो यहावे की दृष्टि में गलत था। राजाओं की दूसरी पुस्तक अध्याय 20। यहोयाकीम के शासनकाल में बाबेल के राजा नबूकदनेज़र ने देश पर हमला किया, फलस्वरूप उसे 3 साल तक नबूकदनेज़र के अधीन रहना पड़ा। इसके बाद उसने नबूकदनेज़र के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। यहावे ने उसके विरुद्ध कादी, अशूर, मोआबी और अमोनी लुटेरे दल भेज दिए कि ये दल यहूदिया को नष्ट कर दे। यह यहावे की उस भविष्यवाणी के अनुसार हुआ जो यहावे ने अपने सेवकों भविष्यवक्ताओं द्वारा की थी। यह तय था कि यहूदिया पर यह सब यहावे के आदेश पर ही हुआ कि वह उन्हें अपनी दृष्टि से दूर कर दे। मनश्शे के पापों के कारण उसके द्वारा किए गए कामों के अनुसार, साथ ही उसके द्वारा बहाए गए निर्दोषों के लहू के कारण, क्योंकि मनश्शे ने यरूशलेम को निर्दोषों के लहू से भर दिया था जिसे यहावे ने क्षमा नहीं किया। यहोयाकीम द्वारा किए गए अन्य कामों और उसकी उपलब्धियों का ब्यौरा यहूदिया के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में दिया गया है। तब यहोयाकीम हमेशा के लिए अपने पूर्वजों में जा मिला। उसके स्थान पर उसके पुत्र यहोयाकीन ने शासन शुरू किया। मिस्र देश का राजा फिर कभी अपने देश से बाहर नहीं आया, क्योंकि बाबेल के राजा ने मिस्र देश के नाले से लेकर फरात नदी तक मिस्र देश के राजा की सारी संपत्ति छीन ली थी। यहूदिया पर यहोयाकीन का शासन। यहोयाकीन ने जब शासन करना शुरू किया तब उसकी उम्र 18 साल थी। यरूशलेम में उसने 3 महीने तक शासन किया। उसकी माता का नाम नेहुष्ता था। वह यरूशलेम वासी एल नाथान की पुत्री थी। उसने अपने पूर्वजों के समान वही सब किया जो यहावे की दृष्टि में गलत है। उसके शासनकाल में बाबेल के राजा नबूकदनेज़र के सेना के अधिकारियों ने यरूशलेम आकर उसे घेराबंदी कर लिया। जब उसके सेना के अधिकारी नगर को घेरे हुए ही थे तब बाबेल का राजा नबूकदनेज़र स्वयं नगर को आया। यहूदिया के राजा यहोयाकीन ने बाबेल के राजा के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। स्वयं उसने, उसकी माता ने, उसके सेवकों ने, उसके सेनाधिकारियों ने और उसके राजघराने के सेवकों ने। यह उसके शासनकाल का 8वां साल था जब बाबेल के राजा ने उसे बंदी बनाया। वहां से उसने यहावे के मंदिर और राजघराने के सारे खजानों को निकालकर अपने साथ ले गया। उसने इज़राइल के राजा शलोमोन द्वारा यहावे के मंदिर के लिए यहावे के आदेश के अनुसार ढाले गए सारे सोने के बर्तनों को तोड़ डाला। यह सब यहावे की भविष्यवाणी के अनुसार ही हुआ। वह अपने साथ सारे यरूशलेम, सारे अधिकारियों, सारे वीर योद्धाओं, सारे शिल्पियों और धातु शिल्पियों को अपने साथ बंधुआई में ले गया। कुल 10,000 बंदियों को वहां कोई भी बचा ना रह गया सिवाय देश के कंगाल नागरिकों के। वह यहोयाकीन को अपने साथ बंधुआई में बाबेल ले गया। उसके अलावा राजमाता, राजा की पत्नियों, उसके अधिकारियों और देश के बड़े बड़े लोगों को भी वह यरूशलेम से बंधुआई में बाबेल ले गया। सभी 7,000 वीर योद्धा, 1,000 शिल्पी और धातु शिल्पी जो सभी युद्ध के लिए सक्षम थे, जिन्हें बाबेल का राजा बंधुआई में बाबेल ले आया। बाबेल के राजा ने यहोयाकीन के चाचा मतनिया को उसके स्थान पर राजा ठहरा दिया और उसका नाम बदलकर सिदकियाहू रख दिया। यहूदिया पर सिदकियाहू का शासन। जब सिदकियाहू ने शासन शुरू किया उसकी उम्र 21 साल थी। यरूशलेम में उसने 11 साल शासन किया। उसकी माता का नाम हामूतल था। वह लिबनावासी यरेमिया की पुत्री थी। उसने वह किया जो यहावे की दृष्टि में बुरा था। वही सब जो यहोयाकीम ने किया था। वस्तुतः यरूशलेम और यहूदिया ने यहावे को इस सीमा तक क्रोधित कर दिया था कि यहावे ने उन्हें अपनी नजरों से ही दूर कर दिया। यरूशलेम का पतन। सिदकियाहू ने बाबेल के राजा के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। राजाओं की दूसरी पुस्तक अध्याय 25। राजा सिदकियाहू के शासन के 9वें साल के 10वें महीने के 10वें दिन बाबेल के राजा नबुकदनेज़र ने अपनी सारी सेना के साथ आकर यरूशलेम को घेर लिया, उसके आसपास छावनी डाल दी और इसके चारों ओर घेराबंदी की दीवार बना ली। राजा सिदकियाहू के शासन के 11वें साल तक नगर घिरा रहा। चौथे महीने के 9वें दिन से नगर में अकाल ऐसा भयंकर हो गया कि नागरिकों के लिए कुछ भी भोजन ना बचा। तब उन्होंने शहरपना को तोड़ डाली और रात में सारे योद्धा दो दीवारों के बीच की द्वार से, जो राजा की वाटिका के पास थी, निकल भागे। कश्ती इस समय नगर को घेरे हुए थे। ये योद्धा अराबा की दिशा में आगे बढ़ते गए, मगर कश्तियों की सेना ने राजा का पीछा किया और यरीखो के मैदान में उसे पकड़ लिया। इस कारण सारी यहूदी सेना बिखर गई। उन्होंने राजा को बंदी बनाकर रिबला में बाबेल के राजा के सामने पेश किया। उस पर दंड की आज्ञा दी गई। उन्होंने सिदकियाहू के पुत्रों का वहीं उसी के देखते देखते वध कर दिया। इसके बाद उन्होंने सिदकियाहू की आंखें निकाल ली और उसे कांसे की सांकलों में बांधकर बाबेल ले गए। बाबेल के राजा नबुकदनेज़र के राज्य काल का 19वां वर्ष 5वें माह के 7वां दिन बाबेल के राजा का सेवक, अंगरक्षकों को प्रधान नेबूज़रदान यरूशलेम आ गया। उसने यहावे के भवन में राजमहल में और यरूशलेम के सभी भवनों में आग लगा दी। हर एक अच्छा भवन भस्म कर दिया गया। अंगरक्षकों के प्रधान के साथ आई हुई कश्ती सेना ने मिलकर यरूशलेम के चारों ओर बनाई हुई दीवारों को ढा दिया। उन सभी को जो नगर में बाकी रह गए थे और जो बाबेल के राजा की ओर भाग गए थे, और दूसरे लोगों को भी अंगरक्षकों का प्रधान नेबूज़रदान बंदी बनाकर बंधुआई में ले गया। मगर देश के कुछ कंगाल लोगों को अंगरक्षकों के प्रधान ने वहीं छोड़ दिया कि वे वहां रहकर अंगूर की उपज की देखभाल करें और भूमि पर हल चलाते रहें। यहावे के मंदिर के कांस्य स्तंभ, कांस्य के आधार तथा कांस्य जल बर्तनों को कसदी तोड़कर उनके टुकड़ों को बाबेल ले गए। वे यहावे के भवन के पवित्र बर्तन, पावड़े, चिमटे तथा सभी कांस्य बर्तन जो मंदिर में आराधना के लिए उपयोग होते थे, ये सब अपने साथ ले गए। इनके अलावा आग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले बर्तन और कटोरे भी। अंगरक्षकों का प्रधान वह सब जो सोने और चांदी का था अपने साथ ले गया। दो स्तंभ, एक विशाल जल बर्तन, उनके आधार जो शलोमोन द्वारा यहावे के भवन में उपयोग के लिए निर्मित किए गए थे, इन सब का कांस्य अतुलनीय था। एक एक खंभे की ऊंचाई लगभग 8 मीटर थी, जिसका सिर कांसे का था। इस सिर की ऊंचाई लगभग 1.5 मीटर थी। सिर के चारों ओर जाली और अनार की आकृति गढ़ी हुई थी। यह सभी कुछ कांसे का था। दूसरे खंभे पर भी इसी प्रकार की जालीदार आकृतियां थीं। इसके बाद अंगरक्षकों के प्रधान ने प्रमुख पुरोहित सेराइया, सह पुरोहित जेफनिया और 3 मंदिर द्वारपालों को, नगर में से सैनिकों के पर्यवेक्षक अधिकारी तथा राजा के 5 सलाहकारों को जो वहीं नगर में थे, तथा सेनापति के सचिव को जो देश के लोगों को सेना में भर्ती करता था, तथा देश के 60 व्यक्तियों को जो उस समय नगर में पाए गए थे, अपने साथ बंदी बनाकर ले गया। नेबूज़रदान जो अंगरक्षकों का प्रधान था, उसने इन सभी को रिबला ले जाकर बाबेल के राजा के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। तब बाबेल के राजा ने हामात देश के रिबला नगर में इन सभी का वध कर दिया। इस प्रकार यहूदिया के निवासी अपने देश से बंधुआई में ले जाया गया। कुछ प्रजा के लोग जिन्हें बाबेल के राजा नबुकदनेज़र ने यहूदिया में रहने के लिए छोड़ दिया था, उनके लिए नबुकदनेज़र ने शापान के पोते अहीकाम के पुत्र गोदालिया को राज्यपाल बना दिया। जब सारे सेनाधिकारियों और उनके सैनिकों ने यह सुना कि बाबेल के राजा ने गेदालिया को राज्यपाल बना दिया है, वे सब अपने सैनिकों के साथ गेदालिया से मिलने मिज़्पा आ गए। उनमें ये भी शामिल थे नेथनिया का पुत्र इश्माइल, कोरिया का पुत्र योहानन, नेतोफहात वासी तनुहूमेत का पुत्र सेराइया, एक माखा हाथी वासी का पुत्र यातसानिया। गेदालिया ने उनके और सैनिकों के सामने शपथ लेते हुए कहा, कसदी सैनिकों से डरने की जरूरत नहीं, यहीं देश में रहो और बाबेल के राजा की सेवा में बने रहो तो तुम्हारा भला ही होगा। मगर सातवें महीने में राज परिवार के एलीशामा के पोते नेथनिया के पुत्र इश्माइल ने 10 सैनिकों के साथ जाकर गेदालिया पर ऐसा वार किया कि उसकी मृत्यु हो गई। उसके अलावा उन यहूदियों और कसदियों का भी वध कर दिया जो उस समय मिज़्पा में उसके साथ थे। इसके कारण सभी प्रजा के लोग सामान्य और विशेष सेना अधिकारियों के साथ मिस्र देश को भाग गए, क्योंकि उन्हें कसदियों का डर था। कारागार से यहोयाकीन की विमुक्ति। यहूदिया के राजा यहोयाकीन के बंधुआई के 37वें साल के 12वें महीने के 27वें दिन बाबेल के राजा एवील मेरोदाक ने, जिस साल उसने शासन शुरू किया, यहूदिया के राजा यहोयाकीन को जेल से रिहा कर दिया। उसने उससे कृपा भाव में वार्तालाप किया तथा उसके लिए उन राजाओं से उच्चतर स्थान पर सिंहासन स्थापित किया जो बाबेल में इस समय उसके साथ थे। तब यहोयाकीन ने कारागार के वस्त्र छोड़ दिए और वह मृत्यु पर्यंत राजा के साथ भोजन करता रहा। बाबेल के राजा की ओर से उसे नियमित रूप से उपवेतन दिया जाता रहा तथा मृत्यु पर्यंत उसकी दैनिक आवश्यकताएं पूर्ण की जाती रहीं।